ये जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं ये इतना फालतू पैसा लगाते हैं, किसी को भी हायर कर देते हैं और एक फीचर पे पूरा का पूरा बंदा बिठा देते हैं जिसकी सैलरी 1 CR के अराउंड होती है। द पॉइंट इज उनको कुछ आता जाता भी प्रॉपर नहीं है।
अश्नीर कंट्रोवर्सी में थे,
मीडिया तो यार कुछ भी कहता है। जेब में थे 8,000 रुपए जो रिश्तेदार दे जाते हैं ना कोई फेस्टिवल पे, 100-200 से ऊपर नहीं देते थे कंजूस। मेरा थॉट है कि जितने वहां पे ये यूनिकॉर्न्स बने हैं अगर फंडिंग उठा दो ना आधे ढेर हो जाएंगे। आधे फाउंडर्स को ये भी नहीं पता कि ढंग का 5 साल बाद कंपनी पैसा कैसे बनाएगी। यार ये मेरे को लगता है ये जैप्टो जुप्टो उड़ेगी अच्छे से।
ऑब्वियसली यार मैं उसके बिजनेस मॉडल को इतने से समझता नहीं हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ही इज सच अ क्लोज फ्रेंड दैट आई वॉन्ट हिम टू विन। मिल के बना रहे हो थर्ड यूनिकॉर्न विच इज राइट नाउ आई थिंक इंडियाज मोस्ट एंटिसिपेटेड स्टार्टअप।
काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही है and you'll see a launch in
अश्नीर ग्रोवर। पता है आज वो नहीं, उनके co-founder के साथ हमने पॉडकास्ट बनाया। जिस शार्क से इन्वेस्टमेंट लेना सबसे डिफिकल्ट है उस शार्क को असीम गवरी ने कोल्ड ईमेल करा और उनके साथ उन्हीं की कंपनी के पार्टनर बन गए। ऐसा क्या मेल भेजा असीम ने एंड ऐसी क्या कंपनी बना रहे हैं वो अश्नीर के साथ, इस सीक्रेट को हमने आज रिवील कराया। असीम गवरी के पास ना तो कोई फैंसी IIM या IIT की डिग्री है और ना ही उन्होंने कभी किसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है और 3 failed स्टार्टअप्स भी हैं, फिर भी उनके 4 startup को उन्होंने 100 crore से भी ज़्यादा का बना दिया और अब ये अश्नीर के साथ एक नया 8,000 crore से भी ज़्यादा बड़ा स्टार्टअप बनाने जा रहे हैं। और अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं तो असीम गवरी हैज़ सम रियली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है इस पॉडकास्ट से, नॉट जस्ट एजुकेशन। सो ये पॉडकास्ट ना आपके लिए एक्स्ट्रा हेल्पफुल होगा। यू आर टेलिंग मी हाँ कि IIT रुड़की से बंदा आया, क्या था सीन?
तो बेसिकली वो आया तो उसने बताया कि यार कि मैं ये करता हूँ, मैं प्रोडक्ट मैनेजर AMP पता नहीं, उसने बहुत सारे ऐसे बजवर्ड्स सुनाए हमें। तो मैं बैठा सोच रहा था यार कि मतलब एट द एंड के करता क्या है तू भाई, मतलब दिन में तू
पूछा
हाँ मैंने कहा भाई तू करता क्या है ये बता कि साला तू टेक जानता है या तू प्रोडक्ट सिर्फ ये बताता है कि ये फीचर यहाँ लगा दो या पूरा प्रोडक्ट बनाया तूने। तो ही वॉज लाइक यार कि उसमें एक ना वहाँ बटन में जाके ना वहाँ पे एक फीचर है वो पूरा मैंने बनाया। तो मैंने कहा यार तो प्रोडक्ट मैनेजर क्या हुआ,
फीचर मैनेजर हुआ।
द पॉइंट इज कि ये जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं ये इतना फालतू पैसा लगाते हैं, किसी को भी हायर कर देते हैं और एक फीचर पे पूरा का पूरा बंदा बिठा देते हैं जिसकी सैलरी 1 CR के अराउंड होती है। तो वो जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, तो मैं वो देख रहा था यार कि क्यों लॉस में, ये इन चीज़ों की वजह से लॉस में। When you can get it done in 1/10 of the cost, why you want to put so many people for a single job role?
But yaar, matlab, I think funded startups ka na ek simple rule hai, you know, that is ki hame jaldi chahiye sab kuch aur jaldi karna hai. To market mein talent jab dhoondne jaate hain, ko acche log jo first hand hote hain, wo already kahin aur pe itne paise le rahe hote hain ki tumhe usko top up karke hi lagna padta hai. Iski wajah se expensive ho jata hai kyunki market mein acche engineers, acche product managers itne se
nahi. See, tum train bhi kar sakte ho aur ऐसा कुछ नहीं है यार कि आपको हमेशा ऐसे तोड़ने ही है बंदे। और वो और प्रॉब्लम ये है कि वो IIT का जो टैग है ना, IIT के बंदे लेके आने के वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्स है ना वो बहुत ऊपर जा रही है। तो आई थिंक दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम। और द पॉइंट इज उनको कुछ आता जाता भी प्रॉपर नहीं है। मतलब अपनी डिग्री का ही खा रहे हैं मोटा मोटा।
हाँ सर, डिग्री का खा रहे हैं, लेकिन ऐसा हाइप क्यों है IIT के बंदों का, आप बताओ मुझे
यार। IIT के बंदों का हाइप इसलिए, मतलब एक रिस्पेक्ट तो है कि टॉप 1% लेस देन 1% सिलेक्शन रेट है, विच इज़ फाइन, बट दैट डजंट डिफाइन कि यार वो बंदा सब कुछ जानता है या वो सही काम करेगा।
राइट, तोड़ू बंदा होगा ये गारंटी नहीं है।
अब आप प्रोफाइल देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट मैनेजर है राइट, उसको क्या क्या आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए यार बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो और उसको कैसे मैप आउट करना प्रोडक्ट में, इतना सिंपल सा टास्क है। उसके लिए आप ऐसा IIT क्यों लेके आओगे जो मतलब कि इतना, ये काम तो यार नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। आप IIT वहाँ लगाओ जहाँ पे बहुत हार्डकोर टेक वाला काम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर बन रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी लगाओ। अब हर प्रोफाइल पे IIT लगाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस वुड गो 5x 10x, विच डजंट मेक एनी सेंस। तो आई थिंक वो है ना एक ईगो मसाज मिलता है सबको ना, ऐसे IITians की बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दी ठीक है तो सारे एक एक मतलब आपस में लगे रहते हैं, और इनफैक्ट जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है ना वो भी बहुत स्लो हो जाता है जब okay. आप हर चीज पे एक एक वो लगा लेते हो ना, एक फीचर ये बना रहा है वो फीचर वो बना रहा है, तो वो जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है ना वो भी बहुत इंटरडिपेंडेंट हो जाता है कि यार ये काम इससे पूछोगे क्यों नहीं हुआ, उसकी डिपेंडेंसी है तो आपस में वो घूमते रहते हैं।
या मैं बड़ा खुश हूँ मेरा को-फाउंडर IIT ने
को-फाउंडर IIT इज गुड यार, एटलीस्ट उसको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक मेरा जो को-फाउंडर है, आई थिंक मैं, मुझे लगता था ना मैं बड़ा तूफान हूँ, मतलब मैं खुद में लगता था बिकॉज आई फील लाइक कि मेरे पास स्ट्रीट एक्सपीरियंस है, इन लोगों क्या पता है, तो कॉलेज से डे वन से इनको कॉलेज से निकलते और इनके पास पैसे और डिग्री की वजह से सब रेडी रहता है एकदम लाइफ, तो ये मेरे से तेज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, मेरे साथ जुगाड़ू नहीं होंगे, क्या ही होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, टेक बना देंगे, लेकिन ऐसे। बट भाई मेरा को-फाउंडर फाड़ू है, लाइक मेरा को-फाउंडर आई डोंट नो हाउ उसके ऐसा है, बट ही इज़ अ CTO, इज़ अ टेक गाय, उसको धंधा बहुत बढ़िया समझ आता है, वो बहुत ही जुगाड़ू है, वो मुझसे ज़्यादा सस्ते में IITians के बंदी IITians ही ले आता है, मतलब nice. And I was like, भाई इतना तो मैं मार्केटिंग वाले बंदे नहीं लेके आ पा रहा हूँ मार्केट से, नॉर्मल एजेंसी से, और तू वो करके लेके आ रहा है, एंड प्लस इज एग्जीक्यूशन इज किलर, तो मेरे दिमाग में तो मतलब ऐसा हो गया कि यार IITians में कुछ तो बात होती, हो सकता है सब में नहीं होती हो
यार, ऑब्वियसली काफी में होती होगी, बट द पॉइंट इज उसको जनरलाइज नहीं कर सकते ना। तो वही को-फाउंडर इज अ मेन रोल राइट, जो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आप ऐसा बैठ लोगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा है राइट, तो दैट मेक सेंस, बट दैट डजंट मीन कि आप सारे प्रोफाइल में वही भर लो और अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर लो।
ट्रू, यार टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मेरे को बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया आपकी स्टोरी स्टार्ट करने, को-फाउंडर ऐसा लो जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा हो, विनिंग चांसेस ज्यादा हो, और आपके को-फाउंडर और आप को-फाउंडर के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो राइट, बोथ ऑफ यू, ओनली टू ऑफ यू आर देयर, मिल के बना रहे हो थर्ड यूनिकॉर्न, विच इज राइट नाउ आई थिंक इंडियाज मोस्ट एंटिसिपेटेड स्टार्टअप, हर कोई इसी को देख रहा है, हर कोई सोच रहा है यार थर्ड यूनिकॉर्न का क्या, पहले दिन से यूनिकॉर्न है क्या, उन्होंने पैसे बहुत उठा लिए, क्या सीन हो, क्या बना रहा है, कोई बोल रहा है फिनटेक में बना रहे हैं, कोई बोल रहा है कंज्यूमर में बना रहे हैं, कोई बोल रहा है कहाँ बना रहे हैं, लाइक बहुत ऐसा ना गैसिंग गेम चल रहा है।
तो यार अभी तो गैस करते रहो, आई कांट रिवील क्या बन रहा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही है, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स कभी मार्केट ने नहीं देखे, तो वो आई थिंक एक विजन है विच वी वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट, और मजे करना चाहते हैं यार हम थर्ड यूनिकॉर्न में, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालना चाहते हैं, सो दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू डू, एंड यू विल सी अ लॉन्च इन मार्च,
ओके
एक महीने बाद ही एक लॉन्च है, एंड देन देयर वुड बी अनदर लॉन्च।
यार हमें बता दो क्या बना रहे हो, मार्च में लॉन्च करते हैं साथ में, फिगरिंग आउट रिवील्स द बिजनेस प्लान और द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिकॉर्न,
तो उसमें आई इनवाइट यू टू दिल्ली, तो अश्नीर और मैं इकट्ठे राजशिवानी के साथ लॉन्च रिवील करते
हैं। ठीक है चलो, ये मेरे को मिलना चाहिए, ओके दिस शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, आई नो बहुत लोगों ने बोला होगा कि हमें जानना है, तो I'm not saying I should be the only one. यार मेरे को one of the first बता देना तुम क्या बना रहे हो.
Definitely.
थोड़ा अभी off camera ही बता देना. Okay. Now coming back to you. Okay. So I'll get to you and what you have built. But before that एक बहुत ही important question था मेरे लिए कि कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अश्नीर ग्रोवर के साथ मैं startup बनाऊँ, मतलब पहले एक तो बताओ कि हुआ कैसे?
यार हुआ ये ऐसे
co-founders कैसे बने, मतलब क्या था
उसकी स्टोरी बता रहा था, तो बेसिकली पहले मैं अपना एक कंपनी चला रहा था, आई स्टार्टेड ऑफ पहले स्टार्टअप मोड था, देन इट बिकेम मतलब डिसेंट साइज हो गया उस कंपनी का, एंड वी ग्रू टू 600 एंड ऑफिसेज अक्रॉस ग्लोब, तो उसके बाद जब मैंने 6-7 साल अपना फर्स्ट वेंचर तो नहीं हुआ, दैट वाज द फोर्थ वेंचर,
पहले तीन फ्लॉप हो गए थे,
तो जब वो किया मैंने 6-7 साल, तो मुझे ये लगा यार कि मैंने इतनी एफर्ट मारा लाइफ में, मैं मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में तब से हूँ, जब ये एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड लोगों को समझ नहीं आता था, तो आई स्टार्टेड ऑफ इन द फर्स्ट ईयर लाइक यू आर टेलिंग मी कि आपने 16 साल से स्टार्ट किया, तो मैं भी आई वाज अराउंड 16 और 17 जब मैंने स्टार्ट कर दिया अपना फर्स्ट वेंचर. उसकी भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैं इस अश्नीर वाली स्टोरी कंप्लीट करता हूँ. तो हुआ क्या, तो आई वाज लाइक यार रोज उठो योर स्टोरी में इसको फंडिंग मिल गई, उसको फंडिंग मिल गई है, इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं फंडिंग को, लॉसेस भी हो रहे हैं, और यहाँ हम एक एक यूनिट इकोनॉमिक्स को अपना ध्यान में रखते हुए ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल अपने ही पैसे से ग्रो कर रहे हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा यार. आज तक मतलब किसी ने कुछ पूछा ही नहीं यार कि हम क्या कर रहे हैं. तो वो ना काफ़ी एक डिससेटिस्फैक्शन थी यार कि अभी तक इतना कर लिया बट कोई रिकग्निशन नहीं है, या मतलब अपने आप को ही वो लगा यार कि शायद मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, ये यूनिकॉर्न ही होता सब कुछ.
ओके.
तो मुझे लगा यार मैंने कि कुछ तो करना पड़ेगा भाई, मतलब
रिकॉग्निशन के लिए.
रिकॉग्निशन के लिए नहीं, मतलब यार तुम्हें लगता है ना यार तुम यार इंसान कोई कुछ क्यों करता है, एट द एंड ऑफ द डे तुम पैसा बना लेते हो, दैट इज डन राइट. पैसा अब पैसा एक पॉइंट के बाद मैटर नहीं करता. वो मतलब उतने वो उतने एक्सपोनेंशियली आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स पैसे के साथ ग्रो नहीं करता आफ्टर अ पॉइंट राइट. तो पैसा बन गया, कंपनी बना ली, स्टार्टअप एक सक्सेसफुल कर लिया, अब उसके बाद क्या रह गया भाई, क्या अब क्या करना है जीवन में, नेक्स्ट क्या करना है. तो सोचा यार ये यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न ही हो रहा है, तो यार हम क्यों पीछे रहे, है ना,
हम भी
यूनिकॉर्न बनाएंगे.
ओके.
तो सोचा यार करें कैसे. तो मैंने देखा यार चंडीगढ़ से हूँ मैं, आज तक एक भी स्टार्टअप को ढंग की फंडिंग ही नहीं मिली, मतलब मैं एक स्टार्टअप नहीं जानता चंडीगढ़ में जो 100 मिलियन तक भी पहुंचा हो वैल्यूएशन में.
क्या बात कर,
हाँ हाँ,
कोई यूनिकॉर्न नहीं चंडीगढ़ से,
यूनिकॉर्न छोड़ो 100 मिलियन नहीं है जनरली. तो मैंने सोचा यार इकोसिस्टम का प्रॉब्लम है या क्या इशू है. तो उसके बाद मैंने स्टार्ट की जर्नी, मैंने एक दो और प्रोडक्ट स्टार्ट किए. फिर मैंने देखा यार कि यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक तो मैं टीयर 2 सिटी में बैठा हूँ, ऊपर से कोई बड़ा टैग भी नहीं है, इवन इफ मैंने कुछ तोड़ भी लिया लाइफ में उसकी वजह से भी फंडिंग लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है. तो दूसरा इशू ये था कि मुझे था यार कि मेरे को पूरा अपना ना इकोसिस्टम चेंज करना है, आसपास के लोग चेंज करने हैं मुझे, पूरा मतलब एक जोन ही डिफरेंट में जाना है. तो मैंने एक ना लिस्ट बनाई कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसे इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स उठाता हूँ और उनको कहता हूँ यार कि मुझे आपके साथ ना काम करना है, इंटर्न रख लो मुझे, मुझे अपना असिस्टेंट रख लो, मतलब कुछ भी, मतलब मुझे पहला स्टेप था मेरे को अपना जोन चेंज करना है.
ओके. और ये करोड़ों जब कमा रहे थे उसके बाद ये आइडिया
बात,
हाँ, कि इंटर्न बना लो,
इंटर्न बना लो.
प्रोबेबली 90% फाउंडर से तुम ऑलरेडी पैसे ज्यादा कमा रहे हो.
हाँ हाँ.
फिर भी
वो था मेरे को था कि यार मेरे को इंटर्न रख लो.
ओके.
कि मैं देखूँ सही ये साला फंडिंग का गेम क्या है जो हमें नहीं चमक रहा.
हाँ.
तो ऐसे मैंने लिस्ट बनाई और मैंने सबको मैसेज वैसेज डाले. तो अश्नीर को मैंने मैसेज इसलिए डाला, पहले मैंने 2019 में डाला फर्स्ट मैसेज लिंक्डइन पे.
ओके नाइस.
फिर उसके बाद फॉलोअप किया 2020 में भी किया. ऑल्दो भारत पे का जो टेक था हमारी कंपनी ने कुछ पार्ट उसका बिल्ड किया था इनिशियली, और कभी अश्नीर को नहीं मिले थे हम. उसका जो एक और कंपनी में टेक का देख रहा था उसने हमें आउटसोर्स कर दिया था कहीं चंडीगढ़ में आके, हमें मिला कि ये कर रहे हैं और ये बना दो, हमने बना के दे दिया, उन्होंने फंडिंग वंडिंग रेज कर ली, अपनी टीम बना ली. तो इतना ही हमारा कनेक्शन था भारत पे के साथ. बट आई न्यू यार ये भारत पे साला हर साल फंडिंग उठा उठा के 3 साल में 3 बिलियन तक पहुंच गया. मैंने कहा ये तो यार मेरे को रिस्पांस करना चाहिए, इसको तो पता होना चाहिए यार कोड ब्रू क्या है. हमने तो स्टार्ट किया है एकदम.
हम इनिशियल इनकी सक्सेस का पार्ट थे.
तो मैंने मैसेज डाले, रिस्पांस नहीं आया, मेरा दिल टूट गया. फिर मैंने दोबारा डाला, फिर रिस्पांस नहीं आया. ऐसे मैंने बहुत फाउंडर्स को डाले. फिर मैंने ना मतलब फाइनल किया यार कि लोकेशन कौन सी होगी. तो मैंने दिल्ली एनसीआर को चूज किया. मेरे पास बैंगलोर था या दिल्ली एनसीआर, ये दो लोकेशन को ही मैं देख रहा था. तो दिल्ली एनसीआर बिकॉज चंडीगढ़ के क्लोज है. तो उसमें टॉप लिस्ट पे अश्नीर का नाम था यार कि ये बंदे के साथ क्रैक करना है किसी तरह. तो अब मैं उस डायरेक्शन में सोच रहा था दिन रात. तो मैंने सोचा कि चलो ये ऐसे नहीं हो रहा, मैं क्या करता हूँ. अब फिर वो शार्क टैंक वाला मेरे को दिख गया था, ट्रेलर आ चुका था कि अब ये इन्वेस्ट भी कर रहा है. तो भारत पे जैसा मैंने एक और प्रोडक्ट अपना बनाया मुनाफा पे. तो मुनाफा पे क्या प्रोडक्ट था वो, मैंने सोचा कि मैं प्रोडक्ट लेके जाऊंगा और मैं कहूँगा कि फ्री में एक्वायर कर लो, ठीक है, मुझे अपनी टीम में रख लो. पहला ये मेरी पिच थी. ये मैंने ऐसे लिंक्डइन पे लिखा कि मुझे मेंटरशिप चाहिए, ये प्रोडक्ट अपने इंटीग्रेट कर लो. कि भारत पे वाज पेमेंट्स और मैंने बनाया जैसे दुकान है ना, मतलब एक मिनट में अपना शॉप ऑनलाइन कर लो. तो मेरे को लगा कुछ ऐसा बनाता हूँ जो बिल्कुल ही अलाइन करे.
ओके.
तो वो मैंने प्रोडक्ट बनाया, कुछ वेंडर्स ऑन बोर्ड किए या दुकानों को दिया, उन्होंने वो सब कर दिया। बस एक ही मोटिव था कि किसी तरह ये मेरे को अपने साथ रख ले।
नाइस।
तो तब भी नहीं क्रैक हुआ। तो फिर थर्ड टाइम कोई ना वो स्टार्टअप था जिसमें अश्नीर इन्वेस्टर था, तो मैंने उसको पकड़ा, तो उसके टेक में कहीं इन्वॉल्व हो गया मैं। फिर मैं उसके पीछे बड़ा रहा फाउंडर के, यार मेरे को मिलवा दे।
कौन सा स्टार्टअप है
अभी मैं रिवील नहीं कर सकता।
अच्छा ठीक है, ओके जी, ये भी कहीं ना कहीं वो है।
तो बेसिकली तो मैं उसके फाउंडर के पीछे काफ़ी देर तक पड़ा रहा यार कि मुझे अश्नीर से मिलना है। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स अश्नीर के साथ मीटिंग क्रैक हुई और तब शार्क टैंक एयर हो चुका था, ही वॉज अ बिग नेम।
ओके, तब तक वो सेलिब्रिटी बन
सेल। हाँ, और वो फर्स्ट टाइम मेरे को याद है कि मैं कहीं ऐसे कोई कैफे था ओपन गार्डन में बैठे हुए थे हम, एंड ही वॉज कमिंग ऑन वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था ना वो स्कूटी वाले उसमें
रीवैम्प मॉडल नहीं
वो जो ई बाइक्स
ही वॉज कमिंग ऑन मॉडल ना रोड क्या था
शायद कुछ ऐसा था। ही वॉज कमिंग और आई वॉज लाइक जो स्टारस्ट्रक देख के, यार मेरी तो बोलती बंद होगी दो सेकंड के लिए कि यार ये बंदा, और पर्सनालिटी भी एकदम मतलब काफ़ी इंटिमिडेटिंग। तो मैंने मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा क्या हाल है, बढ़िया ये वो। तो मैंने बोला यार मैंने आपको बड़े मैसेज किए हैं ये वो कि, और टेक हमने बनाया था भारत पे का। कहते अच्छा, कहता भाई फिर तो मेरे को मैसेज कर देता, व्हाट्सएप कर देता। मैंने कहा नंबर ही नहीं देता था कोई आपका, बड़ा ट्राई किया। तो फिर मैंने कहा यार कि पहले मैं नंबर ले लेता हूँ। हाँ। क्या मुंह पे तो मना नहीं करेगा। हाँ, भाई।
हाँ, अभी बोला, जस्ट अभी बोला नंबर ले लेता।
मैंने उसी टाइम नंबर ले लिया।
नाइस।
तो मैंने नंबर ले लिया, मैंने जाके पहले ही पहुंचते घर मैंने मैसेज डाल दिया, इट वाज नाइस मीटिंग दिस दिस दिस। और फिर मैंने नेक्स्ट टाइम मैसेज डाला आई वांट टू मीट यू। फिर सेकंड मीटिंग क्रैक करने की कोशिश हुई। तो सेकंड थर्ड मीटिंग में जाके ना मैंने ये बोल दिया कि यार कि मुझे ना आपके साथ काम करना है किसी भी कैपेसिटी में, चाहे अपना ईए रख लो, असिस्टेंट रख लो, बट आई वॉन्ट टू जस्ट मतलब कि अपना पूरा इको सिस्टम चेंज करना है। चंडीगढ़ से मुझे दिल्ली या कहीं शिफ्ट होना है और मुझे मतलब नेक्स्ट लीग में काम करना है।
अब बड़ा गेम खेलना,
बड़ा गेम खेलना है। अब वो खेल लिया, अब मुझे यूनिकॉर्न खेलना है। तो ही वॉज लाइक कि ठीक है यार कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरा भारत पे का जो भी अभी वो सब सीन हुआ था, तो उस टाइम पे तो कुछ विजिबिलिटी नहीं थी कि अभी भारत पे में वापस जाना है या भारत पे से एग्जिट होना है। बट मैंने तो बोल दिया कि यार चाहे मेरे लिए तो भारत पे होता या कोई भी पे होता, मैंने तो कहा था मुझे तो बस असिस्टेंट रख लो, साथ में रख लो बस। तो फिर उसके बाद एक और मीटिंग हुई। फिर उस टाइम मैंने कहा यार कि अभी आप सोच रहे हो, इज़ लाइक कि अभी नहीं मैं सोच रहा, अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं है, मे बी डाउन द लाइन 6-7 मंथ्स मैं कुछ सोचूंगा, बट मैं आराम से सोचूंगा जब सोचूंगा। तो मैंने कहा आप ठीक है, आप जब मर्जी सोचो, बट मेरे को एसोसिएट कर लो कि इन एनी कैपेसिटी। मतलब फिर मैंने थोड़ा ना मतलब मैंने कहा यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ और मैं अब खुद ही प्रोडक्ट बन जाता हूँ, मैं पिच करता हूँ। तो मैंने बताया यार मैं ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 8,000 रुपये से और करते करते मैं 100 करोड़ की कंपनी बना दी और कंप्लीटली बूटस्ट्रैप ये वो। तो उनको थोड़ा सा चमका यार कि बंदे ने कुछ तो किया अपनी लाइफ में,
दम है।
हाँ, और तो फिर वो कहते चलो मैं सोचता हूँ। फिर अगली मीटिंग हुई, फिर मैंने फिर पोक किया, फिर मैंने कहा यार कि आपने सोचा उस बारे में? तो उन्होंने कहा कि चल जब मैं करूँगा ना तो कर लेंगे कुछ ना कुछ साथ में, मतलब बहुत ओपन एंडेड करके छोड़ दिया। फिर मैंने उनको फिर पिंग किया, मैं पिंग करता रहा आपने कुछ सोचा, आपने कुछ सोचा। कभी वो US ट्रैवल कर रहे थे, कभी यूरोप ट्रैवल कर रहे थे, तब वो बुक लिख रहे थे अपनी ना उस टाइम पे। तब उस टाइम पे मतलब फिर व्हेन ही केम बैक ही मैसेज मी कि दिल्ली आ जा। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या है, तो मैं गया और उन्होंने कहा कि मैं ये शुरू करने लगा हूँ XYZ एंड साथ में करते हैं। मेरी तो मतलब जमीन निकल गई यार पैरों से, यार ये क्या मतलब, मैं तो लगा हुआ था। और बंदे ने मतलब ये कहा कि आप ये देखोगे, उस बंद अश्नीर ने मुझे कहा कि चल करते हैं साथ में, इतना कह के छोड़ दिया। और उस उन्होंने अपने वर्ड्स को डिलीवर किया, मतलब बहुत बड़ी बात है यार।
ट्रू।
मतलब आप किसी को, मैं बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कभी कोई काम नहीं किया साथ में, उन्होंने मेरे को वर्ड्स दे दिए यार ठीक है जब मैं करूंगा साथ तेरे को बुला लूंगा। और फिर जब उनको कुछ महीनों बाद उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ करना है, तो ही मैसेज मी एंड और जो उन्होंने कमिटमेंट ओपन एंडेड दी थी ही डिलीवर्ड टू हिज कंपनी. तो मेरी तो रिस्पेक्ट उस बंदे के लिए, तो मतलब लाइक
बड़े
200 में से 200 होगी यार.
क्या हवा में नहीं बोलता है ये बंदा.
हवा मतलब हवा में नहीं बोलता यार, जो बोलता है जितना बोलता है मतलब वो डिलीवर होता है. और मतलब कोई बकवास नहीं, ऐसे अगर बोल दिया तो डिलीवर होगा. तो उस लेवल की जो करेक्टर और कमिटमेंट है तो मतलब मैंने नहीं देखा यार. तो ऐसे फाइनली वो क्रैक हुआ एंड वी बिकेम को फाउंडर.
तो ऐसे मतलब ऐसे स्टार्टिंग वाला साथ में करते हैं तो ऐसे नहीं सोचा कि यार ये रख लेता हूँ या ये कर लेता हूँ. नहीं, डायरेक्टली बोला को फाउंडर बनते हैं.
तो जब उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने बोला कि जब करोगे तो साथ में ले लेना. तो फिर जब मैं नेक्स्ट मीटिंग में हुआ कि आपने कुछ सोचा, कहते अभी तो नहीं सोचा, जब मैं कुछ करूंगा तो साथ में कर लेंगे. बस इतनी कॉन्वर्सेशन थी.
अब साथ में कर लेंगे मतलब
कुछ भी हो सकता,
कुछ भी हो सकता था.
हाँ, कुछ भी हो सकता था.
एंड देन व्हेन यू मेट, तो जब उसने दिल्ली बुलाया, तब दिल्ली बुलाया उन्होंने, तो फिर बोला कि बस
हाँ कि अब स्टार्ट करते हैं
साथ में को-फाउंडर.
को-फाउंडर. तो मेरी तो जमीन निकल गई यार कि ठीक है, कि मैं जो 3 साल से चेस कर रहा था जिस चीज को, वो फाइनली क्रैक होगी.
नाइस नाइस. बट एक बात बताओ कि अब है ना ये टाइम है जब अश्नीर कॉन्ट्रोवर्सी में थे, तो सोचा नहीं कभी कि यार कॉन्ट्रोवर्सी है, कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ, क्या आपका क्या टेक है उस पर कुछ है?
यार आई थिंक मैं अपने गोल पे बिल्कुल फिक्स था. अब और कॉन्ट्रोवर्सीज ये सारी चल रही थी, मुझे भी पता काफी वो शोर मच रहा था. बट आप ये सोचो ना, जो बंदा ऐसे कमिट करके, मतलब मैं उनको यार हर रोज लोग अप्रोच करते थे, ठीक है,
अभी भी करते हैं,
अभी भी करते हैं यार. बेस्ट मतलब कंट्री के बेस्ट माइंड्स उनको अप्रोच करते हैं काम करने के लिए, तो वो किसी के साथ भी कर सकते थे ना. बट उन्होंने डिलीवर किया, तो आप समझ सकते हो कि उस बंदे में मतलब कमिटमेंट और करेक्टर कितना स्ट्रांग है. तो बाकी मीडिया तो यार कुछ भी कहता है यार, ट्रस्ट मी. मतलब जो सब आर्टिकल्स ये सब हैं, पता नहीं कैसे सर्कुलेट हो रहे हैं, बट मैं तो इंटरनली जानता हूँ चीज़ों को. तो आई नो कि कितना मतलब व्हाट ही इज एज अ पर्सन एंड व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही कैन नॉट डू. और जो सब मीडिया में हुआ है वो तो आई थिंक टोटली बुलशिट है यार.
नहीं, सो माय पॉइंट वाज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. ओके, व्हाट्स बुलशिट, व्हाट्स नॉट, ये तो ठीक है, लेट इट बी, लेट द वर्ल्ड डिसाइड. और यू नो उनका बिजनेस माइंड और बिजनेस एक्यूमन बहुत तगड़ा है, ये तो सबको पता है. राइट, मतलब ये तो शार्क टैंक पे जो लोग देखते हैं, जिन लोगों को उनकी टोन नहीं भी अच्छी लगती, फॉर एग्जांपल बहुत रूड लगती है, बहुत, वो भी ये तो मानते हैं कि भाई बंदे में बिजनेस सेंस तो बहुत स्ट्रांग है, भले डिलीवर करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, दैट्स डिफरेंट.
एग्जैक्टली.
राइट, तो वो बहुत स्ट्रांग और बहुत मानते हैं, लाइक एंड दैट्स आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट अलॉट. मैं बहुत चमकता है उनको हर चीज़ एंड बड़ा बेस लेवल पर बात कर लेते हैं वो, एक लेवल पे ही हाँ तो हाँ ना तो ना,
ना तो ना,
मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की उनको जरूरत नहीं है.
राइट,
सो दैट इज देयर बिजनेस एक्यूमेंट में वो टिक थे. पहले उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ बनाया, उसमें भी टिक थे, ठीक है. लेकिन अब आप बोल रहे थे कि आपको खेलना था यार, अब यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न गेम खेलते हैं, बड़ा गेम खेलते हैं, वैसे माइंडसेट से जा रहे हो, तो कभी ऐसा नहीं लगा डर कि यार हो सकता है कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से इनका नाम खराब हो गया हो, या नाम खराब हो जाए, या इंडस्ट्री में कभी पैसे नहीं मिले फिर, या मैं यूनिकॉर्न नहीं बना पाऊँ? डू यू थिंक दैट सक्सेस प्रोबेबिलिटी, कभी कभी ऐसा डाउट आया एक पॉइंट पे भी?
यार देखो, व्हेन यू मेक अ गोल, राइट, अब कुछ भी गोल बनाओगे उसके ड्यूरिंग कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, है ना, सिचुएशन बदलेंगी. बट देन इफ यू चेंज योर गोल अगेन एंड अगेन, तो फिर यू विल नेवर रीच योर गोल, एज सिंपल एज दैट. जब आपने फिक्स कर लिया, उसके बाद जैसी मर्जी सिचुएशन है या नहीं है, ऑब्वियसली एक ड्यू डिलीजेंस तो बंदा खुद करता ही करता है यार. आई वॉन्ट टू एसोसिएट, मैं भी किसी के साथ एसोसिएट नहीं करूंगा अगर मेरी ड्यू डिलीजेंस में ऐसा लगे यार कि समथिंग इज रियली रॉन्ग, ठीक है. और मैंने भी अपनी ड्यू डिलीजेंस की थी, ऑब्वियसली मैं आई एम इन टू बिजनेस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स नाउ, राइट, और मैंने भी बहुत बड़ा धंधा बनाया ही है. तो मैं भी ऐसे कुछ नहीं करूंगा जिसमें कल को मेरे को लगे यार कि एथिकली या मॉरली मैं सही नहीं कर रहा हूँ, या कहीं ऐसी जगह एसोसिएट हो रहा हूँ जहाँ नहीं होना चाहिए.
सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे.
सक्सेस इज अ सेकेंडरी, सिंपल सी बात है. अगर बेस लाइन ये है कि मॉरली और एथिकली जहाँ मैं वो हो रहा हूँ, एसोसिएट हो रहा हूँ, वहाँ पे सारी मॉरली एथिकली सब ठीक है. सक्सेस तो मिल जाती है यार, तुम हार्डवर्क करो, तुम्हारा गोल क्लियर है, तुम्हारी विजन क्लियर है और तुम्हें धंधे की सेंस है, तो सक्सेस तो मिल जाती है। तो मुझे ये भी नहीं था यार पैसा उठाना या नहीं उठाना। मेरे को था कि मेनली अगर ऐसे फाड़ू फाउंडर के साथ काम करने को मिल गया तो उससे ऊपर क्या चाहिए, पैसा तो खुद डाल के बना लेंगे।
तो मतलब ये था कि पैसे तो खुद डाल के बना लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। हाँ। रेस कर लेंगे, धंधा अच्छा बनाएंगे तो बन जाएगा। एक बात है कि ऐसा बोलते हैं ना, को फाउंडर्स की रिलेशनशिप है ना मैरिज से ज्यादा लास्ट करती है, राइट? कि को फाउंडर्स एक्चुअली मैरिड कपल से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, उनको बहुत ज्यादा कंपैटिबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानना चाहिए। यूजुअली बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, यू नो क्लासमेट्स होते हैं, वो लोग ज्यादा को फाउंडर्स होते हैं। तो ऐसा क्या लगा कि कंपैटिबिलिटी टाइप में कि मैं इनके साथ कंपैटिबल होगा नहीं होगा, कभी ये सब सोचा ही नहीं?
नहीं, आई थिंक यार मैरिजेस में भी तो अरेंज मैरिज होती है जहाँ इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं मौका नहीं मिलता। सो
नाइस, तो सोचा ठीक है
बना लेंगे कंपैटिबिलिटी। थॉट प्रोसेस तो वो था।
ओके, मतलब कोई भी थॉट प्रोसेस था ही नहीं कुछ कोफाउंडर वगैरह का।
व्हेन यू गो फॉर अरेंज मैरिज तो आप ये देखते हो ना, टिक 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 टिक, उसके बाद कंपैटिबिलिटी बनाते हो। तो मे बी वी बोथ डिड दैट एक्सरसाइज इन आवर माइंड, टिक 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 टिक, एंड उसके बाद कंपैटिबिलिटी बना लेंगे।
सो टेल मी, एक जो बहुत सबसे बाप बात है अबाउट अश्नी, लाइक समथिंग विच यू रियली एडमायर, यार ये बात है ना, इसकी वजह से मुझे यही बिजनेस पसंद है। क्योंकि लिस्ट देखी होगी आपने कि यार दिल्ली गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में कौन से एकदम मस्त फाउंडर है, बेस्ट फाउंडर्स हैं, उन सब में किन के साथ काम करना है बहुत लोग होंगे। चेज अश्नीर को ही ज़्यादा करना है, ऐसा क्यों डिसाइड किया होगा? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली देर मस्ट बी रीजन्स, और मिलने के बाद वो रीजन ट्रू हुए होंगे, कुछ अनट्रू हुए होंगे, राइट? तो ऐसा क्या है कि स्पेसिफिकली यू फेल्ट यार अश्नीर में ये बात है?
यार वो धंधे की जो समझ आना यार, माइंड ब्लोइंग। मतलब विद इन 10 seconds, मतलब सारा जैसे एक AI में प्रोसेस होता है ना डेटा फटाफट से, और उसका आउटपुट आ जाता है कि ये सही है गलत है, वो वाली जो क्वालिटी बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग है। आप कोई भी आइडिया डिस्कस कर लो, उसके सारे वो चीर फाड़ करके खोल के सामने रख देंगे कि इसमें ये सही है या ये गलत है। तो आई थिंक वो क्वालिटी जो हम शार्क टैंक पे हमने सिर्फ एक ग्लिम्स देखा था, तो मैंने मतलब जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में सेशंस में देखा तो आई वाज ब्लोन अवे यार, ये तो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है।
क्या प्रोसेस क्या देखा कि कोई भी आइडिया दे दो उसका एंड टू एंड?
हाँ मतलब बहुत
पोस्टमार्टम कर,
हाँ पोस्टमार्टम बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल। मतलब कोई भी आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं राइट, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है यार उसके प्रोज एंड कॉन्स, या इसमें ये एज केस गड़बड़ हो सकती है, बट ही डू इट लाइक रियली क्विकली, मतलब इतनी स्पीड पे, और वो सब प्रोसेस करके ही टेल यू यार इसमें ये सही है ये गलत है। जो हम रिसर्च वर्क करते हैं ना इतना बैठ के, और वो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, फिर कॉम्पिटिटर स्वॉट एनालिसिस होती है, तो वो 10 seconds के अंदर हो जाता प्रोसेस,
स्वॉट एनालिसिस 10 minutes में जाता है।
तो वो बहुत अमेजिंग है।
सो नाउ कमिंग टू यू, लेट्स टॉक अबाउट योर स्टोरी। ओके, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा उन्होंने आप में क्या देखा कि उसने कभी बताया? व्हाट डू यू थिंक इज योर स्ट्रेंथ विच मे बी ही लाइक्ड एंड ही वाज लाइक, क्योंकि वो किसी के साथ भी स्टार्टअप बना सकते, कोई भी उनके साथ रेडी होता। इंडिया में बहुत लोग है बनाने के लिए, बहुत सारे फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, सेकेंड टाइम फाउंडर्स, थर्ड टाइम फाउंडर्स, सक्सेसफुल एग्जिट वाले फाउंडर्स, ज़्यादा बड़ी IIT डिग्री वाले फाउंडर्स, राइट, IIT वाले फाउंडर्स, हार्वर्ड वाले, सब रेडी होंगे। तो आपके पास ना डिग्री खतरनाक थी, पेडिग्री नहीं थी, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कम नहीं था, ना आप इन्फ्लुएंसर या कुछ हो कि वो किसी के साथ, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ भी काम कर सकते थे कि रातों रात प्रोडक्ट बन जाए। बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डिड ही सी इन यू?
मैंने वैसे कभी पूछा नहीं दो, बट व्हाट आई थिंक मैंने एक ग्राउंड अप से जो मेरी स्टोरी है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके, कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिसमें किसी ने कभी बिजनेस सुना नहीं था, किया नहीं था, और मैंने 16-17 साल की उम्र में पहला जो बिजनेस स्टार्ट किया और 7-8 हज़ार रुपये से, और आज 100 crore का टर्नओवर है टेक कंपनी का, अगर उसकी वैल्यूएशन लेने जाओ तो शायद कुछ अच्छी वैल्यूएशन भी मिल जाए,
हो जाए, हो सकता है यूनिकॉर्न मिल जाए
शायद, शायद कोई तो वो प्रॉफिटेबली जो उसको बिल्ड किया है टीयर टू सिटी में रह के, जहाँ पे टैलेंट की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बूटस्ट्रैप्ड प्रॉफिटेबल स्क्रैच से अपने हाथों से हर चीज़ जो बिल्ड की है, आई थिंक उस वजह से ही हैज़ टेकन मी एज अ को फाउंडर.
कि दैट योर हैंड्स ऑन.
हैंड्स ऑन.
ओके, लेट्स रीविजिट दिस क्वेश्चन अगेन आफ्टर वी गेट टू नो यू. तो हु इज असीम गावरी? डिड आई से इट राइट?
असीम गावरी.
गावरी. ओके, असीम गावरी. हु इज असीम गावरी? टेल अस लाइक व्हाट्स योर स्टोरी. मेरे को शुरू से बताओ कि स्टार्ट, आप बोल रहे हो आपने 8-10 हज़ार से स्टार्ट किया, और कब, कौन सी एज में स्टार्ट किया?
यार आई वॉज प्रॉबेबली 17 आई थिंक. तो पहले मेरे को ये एंटरप्रेन्योरशिप आया कहाँ से माइंड में, वहाँ से स्टार्ट करते हैं.
ठीक है, बताओ सर.
ठीक है, तो ये है, मतलब जब मैं 5th-6th क्लास में था, तो मैं आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो सारे जॉब कर रहे हैं.
ठीक है.
ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब में है, तो बड़ा ही मतलब मंथ ऑन मंथ प्लानिंग होती है हर चीज़ की. अगर एसी चलेगा तो सारे एक रूम में सोएंगे. ठीक है,
तो क्या करते हैं पापा मम्मी? व्हाट डिड यू?
तो वो गवर्नमेंट जॉब में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन में है.
ओके.
एंड तो बेसिकली तो मैंने जब वो देखा कि यार हर चीज़ बहुत नाप तोल की होती है इस घर में, और मैंने एक और हमारा सर्कल भी होता था, हम बाहर जब मैं जाता था और मैं देखता था यार कुछ बच्चे हैं जिनको जो जब चाहे जो मर्जी मिल जाता है. हम घुटते ही रहते हैं यार प्लानिंग ही 5-year प्लान बनते हैं हमारे. साइकिल चाहिए तो यार इतने मार्क्स लो, ये बर्थडे पे मिलेगा. वो चाहिए तो 3 बर्थडे आगे मिलेगा. और मुझे लगा यार ये इनके पेरेंट्स क्या करते हैं जो इनको फटाफट मिल जाता है. तो मेरे को मेरे मॉम ने बताया इसके फादर ना बिजनेस करते हैं. तो मैंने कहा ये सही चीज़ है यार, बिजनेस करने वालों को की लाइफ मस्त है.
हम मिल जाता है.
ये हम बस सोचते ही रह जाते हैं और फाइट में ही रह जाते हैं. तो मुझे उस दिन हो गया यार मैं तो बिजनेस ही करूँगा, ये सब कुछ नहीं रखा जॉब वॉब में.
ठीक है,
बचपन से बचपन में मैंने ये कर लिया. तो फिर चलता रहा, 10th आ गई, बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे थे, तब भी क्लैरिटी थी यार बिजनेस ही करना है. बट फिर बिजनेस करना कैसे, कोई आइडिया नहीं भाई, मतलब कि कहाँ से शुरू करेंगे, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई जानता नहीं घर में बिजनेस कैसे किया जाता है. बट फिर एक बैकअप तो होता ही है कि यार तुम सर्विस क्लास फैमिली से हो तो पढ़ाई का प्रेशर रहता ही रहता है. तो एकेडमिक्स का प्रेशर तो था ही, और +1+2 में नॉन मेडिकल ले लिया, IIT की तैयारी करो. वो तो सबसे डार्क टाइम था यार IIT की तैयारी. मतलब मेरा इंटरेस्ट बिजनेस साइड था और मैं कर रहा था IIT की तैयारी. तो वो 2 साल मैंने किसी तरह निकाले.
ठीक है,
तो मुझे था यार कि कोई ना बीकॉम ज्वाइन करना है ऐसे, कि जिसमें जाके तुम्हें फ्री टाइम हो और तुम BCom BA कर लो और साथ में बिजनेस कर लो. क्योंकि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था यार, अगर मेरे को पता होता ना कि IIT जाके और फंडिंग मिल जाती है, मैं तो सारी मेहनत लगा देता IIT क्रैक करने में.
अच्छा,
अगर ये मुझे तब क्लियर होता, क्योंकि मेरे को तो बिजनेस करना था यार. मुझे थोड़ा सा भी होता ना, मैं तो मतलब 20 घंटे पढ़ता, कुछ भी करता. तो मैं बड़े चिल्ड मोड में था यार कि BCom BA करेंगे और कुछ ढूंढेंगे बिजनेस टाइम पैरेलली कुछ करेंगे, एक डिग्री ले लेंगे और पैरेलली कुछ करेंगे. तो मैं भाई मैंने ऐसे ही किया, नॉन मेड कर लिया, बट धक्के से. पर मैं चला गया कॉलेज में, मैंने ज्वाइन कर ली BCom, ऐसे ही जुगाड़ लगा के कोई छोटे मोटे कॉलेज में. मैंने देखा यार यहाँ पे बच्चे बिल्कुल ही मतलब कैंटीन में ही बैठे रहते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा. कि मेरा मतलब एकेडमिक्स मेरी स्ट्रांग थी, बट वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी चाहिए थी. कॉन्वर्सेशन में यही होता था, इसका क्रश उस पर, उसका क्रश इस पर. कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर, मैंने कहा चलो यार इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं. ठीक है, तो मैं किसी तरह मैंने क्या किया, फिर काउंसलिंग में बैठ के वापस से इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया.
ठीक है,
तो वहाँ पे जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पहुँचा, तो अब मुझे लगा यार कि ड्रीम तो अपना बिजनेस करना ही है, शुरू कैसे करें. तो मैं डे इन डे आउट यही सोचता था यार शुरू कैसे करें. जेब में थे 8,000 रुपये, वो भी जो पिगी बैंक में वो घर वालों ने दिए होते हैं ना, पॉकेट मनी बचा बचा के, और जो रिश्तेदार दे जाते हैं ना कोई फेस्टिवल पे, वो सारे
पैर पड़ो ले
पड़ो, और वो वाले पैसे इकट्ठे हुए थे. तो वो पैसे मैंने सोचा यार पैसा इतना है, बिजनेस कौन सा हो सकता है.
बट रिश्तेदार काफी सही थे आपके, 8,000
8,000 नहीं, ओवर 3-4 years जो जमा हुआ.
लगा
इतना कोई मेरा दयालु रिश्तेदार नहीं
ये रिश्तेदारों में भी चाहिए.
मतलब थे 8,000, अब था करना गया यार, मतलब 8,000 में होता ही गया है. बट वही है, अगर आप एक चीज के बारे में बार बार सोचते रहो, सोचते जाओ सोचते जाओ, तो कुछ ना कुछ आइडिया तो बाउंस कर ही जाता है. वो विजन थी, मतलब विजन, व्हेन आई से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है. अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर आप देखो, अगर आपने गाड़ी लेनी है, फॉर एग्जांपल क्रेटा, हुंडई क्रेटा लेनी है, आप प्लान कर रहे हो, आप सड़क पे जाओगे ना, आपको बार बार हुंडई क्रेटा दिखने लग जाएगी. ये एक ऑब्जर्व करके देखना.
हाँ, जिसके बारे में सोचो वो आते ही
वो दिखने लग जाता है. तो मैं दिन रात सोचता था कि 8,000 से किया गया जा सकता है, किया गया जा सकता है. अब बार बार आप एक चीज़ को बार बार प्रोसेस कर रहे हो, माइंड को बार बार अपने सबकॉन्शियस को वो एक ऑर्डर दे रहे हो, तो वो उस डायरेक्शन में सोचने अट्रैक्ट करने लग जाता है चीज़ों को. तो मैंने देखा यार, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम कार्ट्स है ना जो, वो उस पर यार BMW वाला भी रुकता है, नॉर्मल बंदा भी रुकता है, क्योंकि क्वालिटी है, सील्ड है ना. और मुझे लगा यार, ये कार्ट अगर ऐसे क्वालिटी वॉल्स चला रहा है और आइसक्रीम बेच रहा है, तो हॉट फूड में क्यों नहीं है ऐसा कुछ. तो मेरे को लगा, अगर मैं हॉट फूड में ऐसा कोई कार्ट बना दूंगा ना, तो पूरा पैन इंडिया जा सकता है वो. तो जैसे ये घूम रहे कार्ट वाले, अगर सोचो कि यार किसी को भूख लगी और बर्गर रोक के किसी ने गाड़ी में अच्छा पैक सील्ड उठा के ऐसे दे दिया इंस्टेंटली, तो कि वो किलर हो सकता है आइडिया. और वो छोटे उससे स्टार्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से. तो मुझे नहीं पता था कि यार छोटे से स्टार्ट होगा, बड़े कितना लग जाएगा, बट मुझे लगा 8,000 में कुछ ना कुछ क्रैक हो जाएगा. तो मैं गया लुधियाना चंडीगढ़ से बस पकड़ के, वहाँ पे फैब्रिकेशंस होती हैं, ऐसे फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी. तो मैंने कहा यार कि ये क्वालिटी वॉल जैसी कार्ट है ना, ऐसी बना दो. और मैंने कहा 8,000 में बनाना है बट. तो उन्होंने 8,000 में ना बड़ा अजीब सा ठेला सा बना दिया, नो वेयर नियर क्वालिटी वॉल्स, क्योंकि वो भी कार्ट कम से कम 40-50,000 की बढ़ती है. तो फिर मैंने अपने ना दोस्त वोस्त को पकड़ा, मैंने कहा यार एटलीस्ट इसके ऊपर ना कुछ लोगो शोगो अच्छा सा प्रिंट लगा दो, कि ये थोड़ा सा लगे तो सही यार, कि स्टैंडर्ड का है, कोई आगे रुके तो सही उस पर. तो वो अच्छी ब्रांडिंग व्रांडिंग करके उसका लुक वुक चमका के वो कार्ट लगा दिया. अब वो कार्ट ऐसा बनाया मैंने कि ना फोल्ड हो जाता था, और उसको मतलब वो फोल्ड इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं थी, और उसके ऊपर कोई साइकिल नहीं थी जैसे वो घुमाते हैं ना, क्योंकि 8,000 में सिर्फ वो बना स्टैंडिंग स्ट्रक्चर. तो फिर मैंने किसी शॉप वाले से टाइप किया यार कि मैं कि तेरे को 3-4,000 रुपये महीने का दूंगा, तो मुझे यहाँ पे लगाने दे अपने शॉप के बारे में. तो चल ठीक है, लगा ले. ठीक है, उसने वो मान गया. तो अब सोचा फिर अब बेचना क्या है, कि मेरे को बनाना तो कुछ आता नहीं था. तो
बस हॉट फूड देना है, देना क्या नहीं होता
ये नहीं पता. तो मैंने ऐसे थोड़ा उसके बारे में देखने लगा कि यार कि फटाफट से बाहर शॉप के जो कुछ बना भी नहीं सकते, इतना सा 3x3 के एरिया में आप क्या बना लोगे, कुछ बना बनाया ही असेंबल करके देना पड़ेगा.
मैं तो वहाँ किचन नहीं हो सकता,
किचन नहीं हो सकता. तो फिर वैसा कोई फूड प्रोडक्ट सोचा. तो फिर मैंने हॉट डॉग्स पे फाइनल किया कि हॉट डॉग्स में क्या होता है, बन रखा, सॉसेज रखा, सॉस लगाई और दे दिया. तो ऐसे अब बंदा, अब कोई इंप्लॉय रखने का भी वैसा नहीं है. 8,000 खत्म हो गए, और उसमें 1,000-2,000 उधार लेके माल लिया हॉट डॉग का, और पहले दिन आफ्टर कॉलेज जाके खुद कार्ट लगा ली. खड़ा हो गया उस पर और शुरू कर ली. तो भाई साहब पहले दिन सोल्ड आउट.
ओहो क्या बात है.
हाँ, मैंने 50 हॉट डॉग रखे, 50 के 50 सोल्ड आउट. अगले दिन 100 रखे, 100 सोल्ड आउट. कॉलेज के बाहर नहीं, मतलब मेरे घर के पास शॉप थी वहां पे, तो वो
सोल्ड मार्केट था,
मेन मार्केट था घर के पास वहां पे. तो कॉलेज से मैं 4 बजे आता था, 4 बजे 1 घंटा तैयारी करता था, तो 5 बजे वो लगा देता था अपना ठेला तैयार. तो डे 1 सोल्ड आउट, डे 2 सोल्ड आउट. मेरा तो कन्विक्शन नेक्स्ट लेवल हो गया कि भाई अब तो भाई अराइव्ड, अब बन गया एंटरप्रेन्योर.
अब इंडिया में
धूम मचाएंगे.
वो वाला वो सीन याद आ रहा है मुझे, कौन सी मूवी है, अंदाज अपना अपना,
अंदाज अपना अपना,
ब्रेड मेरी होगी, अंडे भी मेरे होंगे,
पूरे इंडिया में. तो मैं तो 2-3 सोल्ड आउट, अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब. अब नहीं मुझे कुछ दिख रहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता. अब मैं खुद बर्गर हॉट डॉग बना रहा हूँ. मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि कर क्या रहा है लड़का. मेरे पेरेंट्स भी डिस्कवर करते हैं ये लड़का खड़ा क्यों है मार्केट में और ये बेच के आ रहा है, तो उनकी तो भाई साहब मतलब बिल्कुल ही वो तो हो गए यार, इंजीनियरिंग कर रहा है ये, ठेले लगा रहा है, कर क्या रहा है, मतलब वो तो एम्बेरस हो गए यार। सब जानते हैं हम वहीं बड़े हुए हैं, सारा शहर जानता है
तुम ठेला लगा रहे हो, क्या
तुम ठेला लगा रहे हो, ये क्या चल रहा है। तो मेरे मॉम ने तो ये सारा वो स्ट्रक्चर उड़ा के फेंक दिया। तो भाई की ये सब नहीं करना,
पढ़ाई में 2-3 दिन में
दो तीसरे चौथे दिन में ये फेंक दिया।
ओके।
तो फिर थोड़ा लड़ाई वड़ाई हुई घर पे, तो मैंने कहा कि या तो मैं घर रहूंगा या घर छोड़ रहा हूँ या मुझे लगाने दो, कि मैं कॉलेज तो बंक वो नहीं कर रहा, बंक 4 बजे करके आ रहा हूँ खत्म, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें, या तो मेरे मार्क्स पे इफेक्ट आ रहा हो, वो तो चलो आ ही रहा था बट एनीवेज मतलब कन्विक्शन हो गई थी। 2 दिन में मेरे को अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया था कि भाई हम तो बिजनेस बना सकते हैं, ठीक
है,
हम में है, अब नहीं कुछ रोक सकता। अब खुद बना के खुद गाड़ियों में भी सर्व किया मैंने, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स बहुत एम्बेरस हुए, और एक दो बार मेरे को याद है, एक बार ऐसा हुआ कि ना पड़ोस की आंटी आई, वो मार्केट में सामान लेने आई, तो उसने मेरे को ना ऐसे ना गाड़ी में ऐसे बना के सर्व करते हुए देखा, तो मेरे पास आई तो कहती पुत्र करे सब ठीक है, मतलब पंजाबी में, कि कोई पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कोई हेल्पफुल चाहिए है। मैंने कहा आंटी क्या बातें कर रहे हो, मतलब मजे ले रही है आंटी के यार, कि इसके घर में कोई पैसों की प्रॉब्लम है कि ये यहाँ ये करना पड़ रहा है इसे। तो मतलब ऐसे काफ़ी लोगों ने मज़े मुझे लिए, पर मैं तो क्लियर हो गया था उस दिन कि वो मेरा मोमेंट है, जब जिस दिन फर्स्ट डे सोल्ड आउट हुआ था, कि मुझे मिल गया है कि मैंने लाइफ में करना क्या है। तो वो मैंने चलाया और उस कार्ड से, उसी प्रॉफिट से मतलब 4-5 कार्ड्स डाल दिए अक्रॉस सिटी। तो 4-5 कार्ड्स डाल दिए। अब उस धंधे में ये प्रॉब्लम था कि ना पुलिस वाले मारते थे हमारी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले उठा के ले जाते थे। तो मैंने कहा यार मैं इसमें मतलब
उलझा रह जाऊँगा।
मतलब फिर मुझे लगा कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, और मैं ना मतलब कि अब बिजनेस में पूरा इंटरेस्ट आ गया था, मैं पढ़ने लग गया था यार, कि फेसबुक स्टार्ट हो गया, पिंटरेस्ट स्टार्ट हो गया वेस्ट में, कि मतलब वहाँ पे तो लोग फोड़ रहे हैं और मैं कंप्यूटर साइंस से बैठा हूँ, यार इस पे कुछ करते हैं। तब फ्लिपकार्ट ये वो सब नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैंने 2 साल ये किया। फिर मैंने क्या किया,
बड़ा 2 साल कार्ड ही चलाया।
2 साल कार्ड चलाया। तो एक दिन मैं पता नहीं ऐसे उठा और मैंने क्या किया, मैंने डोनेट कर दिया जो वर्कर्स थे, मैंने वर्कर्स रख लिए थे बाद में जब पैसा बनने लग गया था। तो मैंने कहा तुम रखो, तुम अपने अपने चलाओ, मैं अब कुछ नेक्स्ट करने चलता हूँ।
अच्छा, छोड़ दिया वो?
छोड़ दिया एक दिन अब्रप्टली।
यू नो, एक आई विल टेल यू वन स्टोरी क्विक हियर, कि सेम सिचुएशन ऐसे आई थिंक जब मैं कॉलेज गया था फर्स्ट ईयर में, तो मैं 16 एट द एज 16 ओनली आई गॉट इनटू कॉलेज, क्योंकि शायद मैं एक साल जल्दी हूँ मेरी बैच से, लोग 17-18 में पहुँचते हैं, ठीक है। तो मैं गया था, और उस टाइम पे मैं भी ऐसे ही करता था, मैं यार कि मुझे पानी पूरी खाना बहुत पसंद है, ठीक है, हम हर जगह जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट वो होता है, और कहीं पे भी एकदम स्टैंडर्ड हाइजीनिक तब इतना सीन नहीं होता था, छोटे छोटे ठेले पे होता था। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेरे घर में पापा से कि यार एक काम करते हैं, मतलब पानी पूरी के ठेले खोलते हैं पूरे इंडिया में सेम क्वालिटी, जैसे हल्दीराम होता है ना वैसे, सिर्फ छोटी सी ठेला सिर्फ पानी पूरी का। एंड मतलब मेरा आइडिया है कि मैकडॉनल्ड्स बनाऊंगा मैं पानी पूरी के ठेलों से, धीरे धीरे
बन सकता है,
ठीक है, दैट्स व्हाट दैट वाज द आइडिया, पूरे इंडिया में चलाऊंगा और वो पूरा कंट्रोल करेंगे हम चेन, हर जगह सेम टेस्ट होगा, जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हर जगह सेम मिलता है, पानी पूरी पूरे इंडिया में सेम होगी, नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट कहीं भी चले जाओ, ठीक, और बहुत हाइजीनिक होगी, किलर होगा। और मैं ये मेरे घर पे शेयर कर रहा हूँ आइडिया, ठीक है। मुझे लगा घर वाले बोले क्या बकवास है, कुछ भी मज़े उड़ाएंगे। मेरे डैड मुझसे भी बड़े वाले, माय डैड इज़ नाउ टेलिंग कि यार पता है पानी पूरी हर कोई नहीं खाता, फ्रूट्स हर कोई लेता है, फ्रूट महंगे भी होते हैं, एक काम करते हैं अपन स्टैंडर्ड फ्रूट के जूसेस स्टार्ट कर देते हैं। एंड मी एंड माय डैड वी आर वाइबिंग ऑन इट। हमने 3-4 दिन तो बिजनेस मॉडल बना दिए कि यार ऐसा होगा, कितने पैसे लगेंगे, हम मंडी में जाके इतने किलो से फ्रूट लेंगे और सिर्फ इतने वेस्ट कर देंगे, इतना सही लेंगे, मतलब ऐसे करके दिमाग लगाया। सो जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट कि आई थिंक समटाइम्स वेन यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली यू डोंट काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि आप जैसे बोल रहे हो ना कि आपको ये सब 2 साल आपको घर वालों को कन्विंस करना पड़ा, सोसाइटी को कन्विंस करना
पड़ा, कन्विंस नहीं हुए वो,
नहीं हुए, ओके, हाँ तो मतलब वो एम्बैरेसमेंट से जाना पड़ा, यू हैव टू फाइट फॉर योर थिंग, राइट। मेरे लिए इवन दो अगर हमारे पास कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं थे तो भी मेरे को कभी कन्विंस नहीं करना पड़ा घर वालों, लाइक इट वॉज जस्ट
दैट्स अ ब्लेसिंग
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स सच अ ब्लेसिंग कि आपकी स्टोरी सुनने के बाद मेरे को शेयर करना था। मैं कुछ भी आइडिया करता था ना, मतलब मेरे तो घर वाले और एक्साइट होते थे कि हाँ ठीक है इसके और क्या कर सकते हैं, मतलब वो हमेशा नेक्स्ट बात ही करते थे कि अच्छा इसके और ऐसे यार काम करते हैं इसको ना छोटे से पैसे में टेस्ट कर लेते हैं, हर आइडिया टेस्ट करने के लिए रेडी हैं, हर आइडिया का वो डिसमेंटल करते हैं, उनको किसी बात में शर्म नहीं आती, कुछ नहीं होती, पर सब बनाएंगे।
नहीं मेरा मेरे मेरे ऐसे था कि मेरे फादर ने एक बार बिजनेस ट्राई किया था
ओके
तो काफ़ी लॉस में मतलब हाथ जलाए उन्होंने तो मेरे घर वाले मतलब और काफ़ी ऐसे होते हैं कि सर्विस क्लास एक बार कभी बिजनेस में थोड़ा बहुत आते हैं तो वो उनके हाथ पाथ बहुत जल जाते हैं और जिनका बिजनेस एक्यूमेन नहीं भी होता तो वो बहुत डरे होते हैं, बिजनेस के नाम से सबकी फटती थी यार कि ये तो करना ही नहीं है।
आई नो वो ऐसा भी होता है ना, एक मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आप रोल मॉडल बायस होते हो तो आपके आसपास जो रोल मॉडल्स होते हैं ना आपको लगता है आपसे वही बना सकते हो, उसके अलावा नहीं बना सकते हो, वो आपको बायसेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके डैड के साथ वाले सारे दोस्त भी सारे सर्विस वाले ही हैं और उन्होंने उसमें अपनी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ बनाई है तो आपके डैड को लगेगा कि वही एक तरीका है बेटर बनने का। मेरे डैड के सारे फ्रेंड्स बिजनेस वाले थे, छोटे बड़े सब सब बिजनेस ही थे तो उनको लगता था कि बिजनेस ही एक तरीका आगे बढ़ने का, एंड दैट इज़ वाई ही कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड लाइक हार्ड कोर। There was time कि उनको ही नहीं पता था what will he eat tomorrow type, और from there he built और उन्होंने पूरी लाइफ बिजनेस में बनाई तो उनका बहुत हार्डकोर बायस था कि बिजनेस में ही लाइफ बनती है। तो जो रोल मॉडल्स होते हैं तो जो एथलीट्स जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं ना कि मेरे बच्चा डॉक्टर ही बने, जो CA होता है मेरा बच्चा CA बने, तो रोल मॉडल बायस होता है। तो इट्स जस्ट नॉट कि आई थिंक लॉसेस हुए या नहीं हुए, इट्स जस्ट कि आपके आसपास में सारी सक्सेस स्टोरीज उसकी होती है, इसकी वजह से शायद घर वाले
मे बी
वो करते हैं। ओके कंटिन्यू यू वर टेलिंग नेक्स्ट। ओके
सो वो दो साल किया
कंप्यूटर साइंस फिर
हाँ फिर वो मैंने एक दिन उठा और मैंने कहा यार तुम रखो मैं कुछ और करूँगा क्योंकि मुझे दिख गया यार स्केल नहीं होगा। तो मेरा आइडिया मेरा कन्विक्शन क्लियर था पूरा इंडिया में फोड़ना है, पैन इंडिया जाना है, ग्लोबल जाना है, उससे नीचे कुछ नहीं। तो अगर वो नहीं हो रहा तो भाई नेक्स्ट लाइफ में मूव ऑन करो,
अच्छा कुछ और करो,
कुछ और करो जो जा सकता है, जो बड़ा क्रैक कर सकता है कुछ। तो फिर उसके बाद मैंने फिर थर्ड ईयर तक आते आते कुछ मैंने देख लिया यार कि फ्लिपकार्ट जैसी कोई कंपनी स्टार्ट हो चुकी है एंड ई कॉम में कुछ चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि ई कॉम बन रहा था, मैंने कहा लुधियाना में बहुत कपड़े बनते हैं वहाँ से उठाओ और ई कॉमर्स बनाओ। तो मैंने वो स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे फिर मेरे को समझ आया यार यहाँ तो बहुत ही पैसे वैसे लगते हैं यार, फंडिंग वंडिंग चाहिए कुछ ये ऐसा भी कुछ है। तो पैसे तो है नहीं क्योंकि वो हॉट डॉग से थोड़े बहुत बनाए थे, वो दो मतलब कुछ खास था नहीं कि एक टेक का बिजनेस खड़ा हो जाए, वो भी उस टाइम पे जब फ्लिपकार्ट और थोड़े ई कॉमर्स आ चुके थे। तो तब फंडिंग का समझ आया, फंडिंग वंडिंग भी होती है कोई चीज़, तो वो बनाया एक दो और बनाए, गया मैं ऐसे पिच डेक बना के मुंबई में, ऐसे मुंबई आया, फिर मैं बैंगलोर गया, हैदराबाद गया, दिल्ली गया, फंडिंग वंडिंग तो मतलब घर भेज देते थे यार सारे इन्वेस्टर। कुछ कॉलेज में था, कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ था एंड फंडिंग मतलब, और चंडीगढ़ से था, मतलब कोई ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं था कि मेरे पे चार पैसे क्यों लगे।
हाँ मैं कोई सक्सेस प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था,
कोई नहीं था, कुछ नहीं था, वो हॉट डॉग वॉट डॉग कोई नहीं, कुछ गिन नहीं रहा था कुछ
ऐसा। तो, भी न्यू भी था यार सब कुछ, इंडिया में इतने इन्वेस्टर्स भी नहीं होंगे, इन्वेस्टर्स पहुंचे कैसे उस टाइम पे? आज तो गूगल कर लो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स मिल जाती है, पहले कैसे करते थे?
पहले भी आई थिंक कुछ ना कुछ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर पता लग रहा था यार कि कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। तो आप हर चीज़ को ना रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हॉट डॉग्स वाला स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे देखा यार ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से मिलते हैं, उसके पीछे बढ़ के यार ये फैक्ट्री है, फिर उस फैक्ट्री के पास पहुँचाओ, फिर उस फैक्ट्री से कंटैक्ट करो, फिर उसकी कॉस्ट कटिंग की यार अगर वो वेयर हाउस कोल्ड स्टोर है तो उसकी मेन मैन्युफैक्चरर कौन है, फिर वहाँ पहुँच जाओ। तो ऐसे अगर आप एक पकड़ लो यार इस कंपनी को फंडिंग मिली है तो उसकी MCA में रजिस्ट्रेशन अच्छा कौन कौन बैठा है, तो ऐसे ऐसे करके पीछे पीछे पहुंच जाओ।
नाइस नाइस, ये दैट्स अ गुड वे टू सी इट कि आप सिर्फ आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन में देख सकते हो कि उनकी कैप टेबल पे कौन कौन है
एग्जैक्टली
और उससे यू कैन रीच आउट टू पीपल।
तो ऐसे फिर उसके बाद पता लग गया यार कि अच्छा ये चार लोग और भी इन्वेस्टर हैं कि कोई नहीं भी देता ना, कुछ लोग नाइस थे कि उन्होंने आगे कनेक्ट करवा दिया। तो मैं ऐसे घूमा इंडिया
लेने के लिए,
तो सबने घर भेज दिया। तो उसके बाद फिर वो बंद करना पड़ा, तो मुझे लगा ये ना ऑपरेशन हैवी बिजनेस है। फिर मैंने एक शुरू किया सोशल मीडिया एप्लीकेशन, और वो मतलब वो क्या था, तब ना टिंडर आया था, ठीक है, टिंडर आ चुका था
और 2015-16
हाँ, अब ये 14 के अराउंड है कि आ चुका था. मतलब मैं तो बहुत टेक में बहुत वो था कि मैं देखता रहता था क्या आ रहा है. टिंडर आ चुका था वेस्ट में और आई थिंक इंडिया में भी लॉन्च हो चुका था. जो टेक कम्युनिटी थी ना उन्होंने देख लिया था टिंडर क्या चीज़ है. ठीक है, तो मुझे लगा कि यार आइडिया तो बहुत फाड़ू है बट इंडिया में नहीं चलेगा. मेरे माइंड में था इंडिया में क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में ना स्टीरियोटाइप बहुत है. तुम ऐसे अपनी फोटो नहीं लगा सकते कि मैं तैयार हूँ डेट करने के लिए. तो मैंने कहा कुछ अलग बनाते हैं. तो मैंने ऐसी एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें आप एनोनमसली चैट कर सकते हो और फेसबुक लॉगिन से रिवील कर लो आइडेंटिटी जब कंफर्टेबल हो जाओ, जब ट्रस्ट फैक्टर बन जाए.
ओके.
और 2-3 दिन में 1 मिलियन मैसेजेस एक्सचेंज हुए प्लेटफॉर्म पे. मेरे को मिल गया बड़ा प्रोडक्ट कि अब तो कुछ होना चाहिए. और तब फंडिंग इकोसिस्टम
बन रहा था,
भाग रहा था उस टाइम.
2014 इंडिया को फर्स्ट यूनिकॉर्न मिला था, दैट वाज इन मोबी.
हाँ, और फिर अब वो भाग रहा था. अब 2014-15 इज लाइक के भाग रहा है इकोसिस्टम और फंडिंग मिल रही है और फोमो हो रहा है लोगों को कि डाल दो भाई पैसा कहीं भी. तो वो बोला था, अब मैंने कहा अब तो फंडिंग भी मिलनी चाहिए, अब इतना ट्रैक्शन भी है मेरे पास. फिर मैं गया फंडिंग लेने. फिर मैं देख रहा हूँ यार कि मेरे पास प्रोडक्ट भी है, मेरे पास ट्रैक्शन भी है. तो मेरे को आते थे पूछते थे यार रेवेन्यू मॉडल क्या है. मेरे को लगा कि एड्स, मुझे कुछ चमकता नहीं था एड्स के अलावा, क्योंकि मैं बेचूंगा क्या एक उसमें. मुझे नहीं पता था यार टिंडर ने सब्सक्रिप्शन लेके भी पैसे बना लिए. वो तो मेरे माइंड में कभी क्रॉस ही नहीं किया कि यार मैं पैसे ही ले लूँ मेरी ऐप यूज़ करने के. तो वो नहीं क्रॉस किया मेरे को. तो वो रेवेन्यू मॉडल पर फंस जाता था. फिर एक चीज़ मैंने देखी उस टाइम पर, यार ये IIT वाले ना बिल्कुल ही मतलब आइडिया लेके जाते हैं, पिच डेक लेके जाते हैं, इनको फंडिंग मिल जाती है. साला हम प्रोडक्ट भी ले गए, ट्रैक्शन भी ले गए, फिर भी फंडिंग नहीं दे रहे. तो मेरा बहुत मतलब ना मतलब वो बैठ गया यार. मैं बहुत इन्वेस्टर्स से ना मतलब ये इन्वेस्टर कम्युनिटी से ना मेरा बहुत वो हो गया कि यार अब तो साला कुछ ऐसा बनाना है जहाँ खुद ही पैसा लगाऊंगा,
खुद ही
हाँ कि अब कुछ ऐसा बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे. उस दिन खुंदस आ गई मेरे को जब ये ट्रैक्शन भी आ गया ना और फिर भी फंडिंग नहीं दी. तो ईगो पे ले गया मैं,
बुरा लग गया है,
बुरा लग गया है.
मैंने इतना सब किया और उसके बाद अगर मेरे साथ हो रहा है.
हाँ, कि और मैंने ये भी देखा कि यार मेरे कुछ दोस्त थे जो IIT में थे, तो बताते यार इसको फंडिंग मिल गई, उसको फंडिंग मिल गई. पवई में अपनी सिलिकॉन वैली बन रही थी.
हाँ,
सीरियसली मतलब कि कुछ अलग ही चल रहा था. और कुछ नहीं, तुम्हारे पास IIT की डिग्री है, दिल्ली बॉम्बे, IIT दिल्ली बॉम्बे से हो, स्टार्टअप आइडिया है, लेके जाओ इन्वेस्टर के पास, पिच डेक दिखाओ, कोई प्रोडक्ट नहीं है. कम से 1 करोड़ तो मिल ही जाता था.
क्योंकि जोमैटो फ्लिपकार्ट दोनों केसेस सामने आ गए थे ना, दिल्ली बॉम्बे और ओला ऑल ऑफ दिस वाज दिल्ली बॉम्बे. सो इसलिए
और चंडीगढ़ को सीरियसली भी नहीं लेता था कोई उस टाइम पे. कि चंडीगढ़ से है
बंद सिर्फ बैंगलोर गुड़गांव और
आई थिंक गुड़गांव में भी नहीं इतना था. मुंबई में इतना
गुड़गांव में तो फर्स्ट सेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बहुत थे. अगर गुड़गांव में तो फर्स्ट सेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बहुत थे.
बैंगलोर और मुंबई में बहुत एक्शन था उस टाइम पे.
ओके.
क्यों ओला बनी थी यहाँ से IIT बॉम्बे से,
बट जोमैटो दिल्ली से बना है.
जोमैटो दिल्ली से बना है. हाँ, बट मतलब
फ्लिपकार्ट वाले भी तो दिल्ली के, IIT दिल्ली के, बनाया बैंगलोर में, बट IIT
बनाया बैंगलोर में. बट वो फंडिंग का जो इकोसिस्टम
था हाँ, वो पवई और बैंगलोर में
स्ट्रांग था. और चंडीगढ़ तो किसी ने मतलब दूर दूर तक सोचा भी नहीं था. तो कोई मुझे यही कहता था ना कि तू यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हम तब फंडिंग नहीं, तो मैं वो भी कर लेता. बट किसी ने कुछ भी मतलब हाथ ही नहीं बढ़ाया.
ठीक है.
तो मुझे था यार कि अब तो भाई
खुद बनाएंगे.
अब ये तो मतलब गलत हो गया.
ओके.
कि ये अब दूसरी बार कर दिया इन्होंने.
भाई हर्ट हो गया. हाँ. अब दिखाएगा. गाना चल रहा था ऐसा बैकग्राउंड में, ठुकरा के.
तो फिर मैंने सोचा अब मेरे माइंड में था कि मैंने बनाना टेक में है, क्योंकि टेक की फ्यूचर है और मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ. और अब फंडिंग भी नहीं लेनी. अब ये 3 थे. अब जैसे डे 1 पे मेरे पास 8,000 थे ना, कि उसमें कैसे बिजनेस बन सकता है, वो मेरे मतलब जैसे एक जोन में मुझे सोचना था. अब मेरा दूसरा एक जो कंस्ट्रेंट था कि फंडिंग नहीं लेनी, टेक में बिजनेस बनाना है और बड़ा बिजनेस बनाना है. तो अब क्या कर सकता हूँ.
नाइस.
तो उस जोन में मैं सोचने लग गया और ग्रो भी करना है बिना फंडिंग के. तो फिर मैंने स्टार्ट किया कोड ब्रू. और आई थिंक हमने 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है बिना फंडिंग के. और आई वोंट कंसिडर यार ऐसे ज़ीरोधा ऐसे बहुत बड़े बड़ी कंपनीज भी हैं, बट हमारे लिए बिकॉज वी आर अ बी टू बी कंपनी, वी बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर कंपनीज, तो मे बी द चॉइस ऑफ बिजनेस जो थी बी टू बी में थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रो होने में. फॉर एग्जाम्पल ज़ोहो को 25 साल लगे वहाँ तक पहुँचने में. अगर बी टू सी होता कई बार वो बहुत स्पीड पे ग्रो हो जाता है. तो आई थिंक वो क्लैरिटी ऑफ थॉट उस टाइम पे नहीं थी, बट मुझे लगा कि अब पैसा कौन दे सकता है, बिजनेसेस दे सकते हैं मुझे, है ना, पैसा, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल मेरे को हर इन्वेस्टर ने बोल दिया कि पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा. तो मैंने सोचा यार रेवेन्यू ही बनाते हैं ना फिर, तो पैसा देगा कौन, बिजनेसेस देंगे, उनको क्या देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं. तो कुछ प्रोडक्ट्स बनाए टेक्नोलॉजी के, तो वो बेचने स्टार्ट कर दिए.
क्या बनाया
पहले तो बहुत बेसिक, पहले किसी से पूछा, बिजनेस से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए. तो ऐसे करते करते कुछ किसी ने कह दिया यार मुझे ये वेबसाइट चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो बना के डिलीवर करना स्टार्ट
बोलता था. हाँ, जो तुम्हारे टेक में तुम्हें लग रहा है.
हाँ, तो टेक में वो शुरू करते, तो वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड, उससे थोड़े पैसे आते रहे, उस पैसों से हमने टीम बनाई. उस टीम बनाने के बाद फिर हमने देखा यार कि कुछ प्रोडक्ट्स बना लेते हैं जो बिजनेसेस को चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, तो ऐसे धीरे 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 करके प्रोडक्ट लाइन बढ़ाते गए, रिसोर्सेज बढ़ाते गए, कंपनी ग्रो होती रही और अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को बहुत स्ट्रांग रखा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं एक और एग्जांपल दूंगा, आज कोडब्रू में 600 एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे ऑफिसेज हैं दुबई, लंदन, यूएस, कनाडा, बट इन द फर्स्ट थ्री फोर ईयर मैं जितनी सैलरी विड्रॉ करता था वो मेरे सिर्फ ना पेट्रोल और सिर्फ अपना बेसिक खर्चा चलाता था, सो दैट आई कैन पुट ऑल द मनी बैक टू ग्रो द बिजनेस. तो मैं रफली 15-20 हज़ार विड्रॉ करता था, जबकि तब मैं सैलरीज 1.5-2 लाख भी दे रहा था. मतलब मैं एक छोटी ऑल्टो या छोटी गाड़ी में जाता था जो मेरे पास कॉलेज में होती थी, और मेरे एम्प्लॉयज बस बड़ी गाड़ियां हो चुकी थी. तो मैंने बहुत फ्रूगल लाइफ जी है पहले 3-4 साल, क्योंकि वो बिजनेस को बड़ा करना ही वो था
ऑब्सेशन.
हाँ, ऑल्दो मैं सेकेंड, मतलब हमने दो इतना पैसा बना लिया कि दूसरे तीसरे साल में मैं ये ऑडी बीएमडब्ल्यू निकलवा के पूरी टशन मार सकता था शहर में. बट मैंने 10-20 हज़ार ही विड्रॉ किए जिससे मेरा खर्चा चले, और सारा पैसा वापस बिजनेस में डाला और उसको 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो करते गए. बस उसके बाद जब 6-7 साल 8 साल वो करते रहे, तो उसके बाद फिर भी लगा यार कि इतना टेक बिजनेस जिसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतनी हाई है और बी टू बी बिजनेस है, अगर इसमें इतना धंधा ग्रो कर लिया तो आई थिंक कि अब कुछ और बड़ा किया जा सकता है. तो आई थिंक कैपेबिलिटी है करने की कुछ बड़ा, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता था, मेरा थॉट है कि जितने वहाँ पे ये यूनिकॉर्न्स बने हैं अगर फंडिंग उठा दो ना आधे ढेर हो जाएंगे. कि धंधे बंदा नहीं आता बस ऐसे, मतलब कई डिग्री खा रहे हैं कोई कैसे, मतलब आई डोंट नो, मैं 50% ढेर हो जाएंगे मुझे लगता है आज फंडिंग हटा दो.
ओके, मतलब कोई बिजनेस मॉडल रेवेन्यू मॉडल कुछ नहीं है, खत्म हो जाएंगे.
खत्म हो जाएंगे यार, तुम कहाँ से, अगर मतलब बिजनेसेस बना रहे हो, बिजनेस मॉडल फिगर आउट नहीं किया, फंडिंग इन्फ्यूज करी जा रहे हो, सारे फेसबुक मॉडल को कॉपी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा या वैसा चला जाएगा, ठीक है. तो अभी आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, राइट. अब फंडिंग रुकी हुई है, क्या क्या अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स ने क्या क्या पोस्ट डाला है, अभी मैं जाना नहीं चाहता डिटेल में, बट मेरा ये बिलीफ है यार कि जिन्होंने अपने हाथ से, जो Tier 2 Tier 3 में बिजनेसमैन बैठे हैं, जिन्होंने कन्वेंशनल अच्छे ट्रेडिशनल बिजनेस बनाए हैं, उनको थोड़ा टेक सिखा दो ना, वो आधे एंटरप्रेन्योर्स की ले लेंगे जो टॉप पे बैठे हुए हैं.
क्यों ऐसा लगता है कि क्यों ले लेंगे, ऐसा क्या है जो आपने, व्हाट डू यू फील मे बी इज देयर इन यू, यहाँ सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स में है, यहाँ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में है, जो बड़े टेक फाउंडर्स में जिनके पास बहुत फंडिंग्स है, बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स है, उनमें नहीं है.
यार धंधे के फंडामेंटल्स.
ओके, जैसे
यार कि कितना कैक क्या है तुम्हारा, अगर तुम ठीक है तुम लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हो, अपनी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, आप फंडामेंटल्स को छोड़ के सिर्फ फंड रेज के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो कि अगला राउंड कैसे रेज करना है, फिर उसका अगला कैसे करना है, आप बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम्हारे ऑपरेशनल एक्सपेंस ठीक नहीं है, और फिर बाद में सारा ऑफलोड कर रहे हो रिटेल इन्वेस्टर पे जाके अपना शिट, वो कहाँ से समझदारी है यार. मतलब कितने केसेस हुए अभी, सारा अपना ऑफलोड कर दिया वहां जाके रिटेल इन्वेस्टर ने, उनका पैसा डुबा दिया।
पर तो चेंज हो रहा है।
क्या चेंज हो रहा है अभी? तो कोई एग्जांपल आया जिसका आईपीओ निकला और वो बहुत सस्टेन और रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छा पैसा बनाया? एक प्रोबेबली एक होगा मेरे माइंड में।
कौन?
स्टार्टिंग में नायका ने अच्छा पैसा बना के दिया था रिटेल,
तो वो
भी डाउन है। तो क्योंकि फंडामेंटल, जो बिजनेस के फंडामेंटल इंटैक्ट नहीं है ना यार,
कि बिजनेस करना है वो इंटैक्ट ही नहीं, सिर्फ फंडामेंटली फंड रेस पे ध्यान,
फंड रेस पे ध्यान है अब। बट जो कन्वेंशनल बिजनेसेस भी ग्रो किए हैं, अंबानी या जो वो बनाए हैं, जो अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो आज भी सस्टेन करे और उन्होंने ईयर ऑन ईयर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है, क्योंकि वो धंधे गुजराती लोगों ने सॉलिड बिजनेसेस बनाए हैं, जो बिजनेस में जान है, सोल है उस बिजनेस में, वो फंड जुड़े हुए हैं अपने फंडामेंटल से।
फिर मतलब डोंट यू थिंक कुछ तो होगा, इतने सारे लोग इतने बड़े बिजनेस बना रहे हैं और इतने लोग दे रहे हैं, तो कुछ तो होगा जो प्लान होगा लॉन्ग टर्म में लोगों का। जरूरी थोड़ी हर किसी का बिजनेस हो, क्योंकि आई टेल यू व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, ओके, कि मैंने कहीं पे पढ़ा था ये कि आप मार्केट कैपिटलाइज कर लो, लीडर बन जाओ, धीरे धीरे आप रेवेन्यूज बना सकते हो। ये यूएस की कॉन्सेप्ट है। यूएस में मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं कि आप कितनी जल्दी मार्केट में डिस्ट्रप्शन फैला देते हो, कितनी जल्दी मार्केट से आप पैसा बना लेते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा आपका मार्केट शेयर होता है, क्योंकि जितना बड़ा मार्केट शेयर होता है देन आपके पास चांसेस होते हैं, उस टाइम पे आप रेवेन्यू बना सकते हो।
एब्सोल्युटली, बट उसकी विजन तो हो। आप आधे फाउंडर्स को ये भी नहीं पता कि ढंग का 5 साल बाद कंपनी पैसा कैसे बनाएगी, वो तो क्लियर हो एटलीस्ट।
पर ओके,
नहीं क्लियर होता कि यार के प्रॉफिटेबली कैसे ऑपरेट करेगी। मैं इतने एग्जांपल दे सकता हूँ कि उनको आज भी नहीं पता कि 5 ईयर 7 ईयर्स डाउन द लाइन ये कंपनी कैसे बनाएगी। सारों ने एग्जांपल ले लिया, अमेजोन 7 साल लॉस में रही,
20 साल
लॉस में रही, या फेसबुक इतने टाइम पैसा नहीं बनाया, बट क्लैरिटी ऑफ थॉट ना वहाँ पे प्रॉपर थी यार ये कैसा बनेगा। यहाँ पे वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है यार कि 7 साल 10 साल बाद भी पैसा कैसे बनेगा, पैसा इन्वेस्टर्स का वापस कैसे जाएगा जो लास्ट में एंटर किया इन्वेस्टर।
पहले वाला तो निकल गया
और फाउंडर ने भी बना लिया बढ़िया। वैसे
फाउंडर कहाँ बना पाते हैं यार, बहुत लेट बना पाते हैं।
सेकेंडरी राउंड तो निकलते ही है ना, हर राउंड पे अपना सेकेंडरी शेयर्स तो बेचते
हैं। बहुत टाइम बाद निकलता है, इतना आसान थोड़ी है।
नहीं नहीं, आफ्टर एवरी राउंड दे सेल सेकेंडरी शेयर्स यार। फाउंडर तो सेफ है यार।
आई काइंड ऑफ डिसएग्री, क्योंकि मुझे लगता है फाउंडर इतना आसान नहीं होता सेकेंडरी, कैसे मतलब कल पे आए फाउंडर लेके चले जाए और कोई बिजनेस सेंस नहीं।
जितने राउंड सीरीज ए सीरीज बी जब वहां से स्टार्ट हो जाता है आफ्टर सीड, सीरीज ए के बाद तो सेकेंडरी राउंड स्टार्ट हो जाते हैं यार। सेकेंडरी करने देते हैं इन्वेस्टर्स वीसी एटलीस्ट, अगर वो
थोड़ा बहुत,
अगर $100 रेज हो रहा है उसमें $5 सेकेंडरी हो जाता है।
हाँ, तो 100 मिलियन पे 5 मिलियन इतना बैड
तो 5 मिलियन तो आ गया ना जेब में फाउंडर के। तो सी आई एम नॉट अगेंस्ट कि ठीक है यार कि उन बंदों में भी दम है, उन्होंने बनाया है, बट हाँ, मैंने ये बोला कि 50% ढेर हो जाएंगे। मैंने ये नहीं बोला कि 100% ढेर हो जाएंगे, क्योंकि वो भेड़ चाल में सारे ही चले गए ना यार, कि फंडिंग उसी को ग्लैमराइज कर रहे हैं।
आई तो स्टिल फील कि मैम कुछ तो है, या तो हमें पता नहीं है अभी तक, या हमने बस 2-3 एग्जांपल्स गलत देख लिया, या हम बहुत जल्दी जज कर रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि अगर इतना बड़ा बनाया है किसी ने और इतने फाउंडर्स हैं जिन्होंने, आज उनके बिजनेस में भी लॉसेस में चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के लॉसेस होते हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग उठा लिए, वो 5 साल हो गए 7 साल हो गए अभी तक उनके पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है, पर आई एम श्योर कोई प्लान होगा जिसकी वजह से उनको पैसा मिल रहा है और जिसकी वजह से उनका गेम चल रहा है, बिकॉज दे आर स्मार्ट। क्योंकि कोई भी एक द पर्सन हु इज नॉट स्मार्ट, उसको पैसा नहीं मिलने वाला मार्केट
में, वो तो बेसिक है।
क्योंकि आईआईटी की डिग्री हो या आपकी कोई भी पेडिग्री हो, आईआईएम हो, कुछ भी हो, राइट, उसके लिए भी आपको सीड राउंड मिल जाएगा, सीरीज से मिल जाएगा, सीरीज बी सीरीज सी, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा भाई, मतलब तुम कुछ तो स्मार्ट हो, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी से तुमको दिखानी पड़ेगी
यार। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी डेफिनेटली दिखानी पड़ेगी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उसके बिना तो नहीं चला सकते, इतना बड़ा धंधा नहीं बना सकते। बट हाँ, उसके हाइंडसाइट में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल गो मैकेनिक ने क्या किया, क्या एग्जीक्यूशन दिखाई, फ्रॉड किया ना इन्वेस्टर्स के साथ, नंबर्स को इंक्रीज किया, मतलब इट इज आउट देयर इन द पब्लिक, हुआ है ना, मतलब लिंक्डइन पे खुद फाउंडर ने डाला है, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। हां, ही एडमिटेड, तो वो वैल्यूएशन बनाने के चक्कर में यूनिकॉर्न स्टेटस की वजह से उसने सारे नंबर घुमाए, मतलब नंबर घुमाने पे फोकस है, धंधा बनाने पे फोकस नहीं है. ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं. आई एम अगेंस्ट दोज कंपनीज, बट कईयों ने बहुत सॉलिड धंधा भी बनाया यार, क्योंकि वो जो स्टार्ट हुआ था. अब इसमें एक पॉइंट है, लुक एट द बिजनेसेस जो पीछे जो 7-8 साल पुराने हैं, जब फंडिंग इतनी ग्लैमराइज नहीं थी पर उन्होंने फंड रेज कर लिया था, तो उनका फोकस धंधा बनाने पे था. और वो वाली कंपनीज है ना, वो आज की डेट में भी किल कर रही हैं और वो बनाएंगी कुछ ना कुछ. बट लेटर हाफ, ये डेकेड जब से फंडिंग स्टार्ट हुई है, फर्स्ट हाफ में जो कंपनीज ने अच्छा पैसा उठाया और आज जो सर्वाइव कर रही हैं, उन्होंने फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के बनाया. क्योंकि वो इतना हर टाइम पे ये नहीं होता था यार कि टीवी पे पहुंच जाते थे फंड रेस करने, क्योंकि उनको था यार कि वो सही धंधा बना रहे हैं. पर लेटर हाफ में जो कंपनीज आई हैं ना, उनके हाल बुरे हैं, क्योंकि वो मतलब वो बिजनेस फंडामेंटल्स को छोड़ के वो ग्लैमराइज जो हो चुका है ना फंड रेस, उसकी वजह से बस उसी चीज़ पे फंसे हुए हैं वो, कि अब इतना फंड उठाना है, अब इतना फंड उठाना है. बट ये नहीं कि यार कि बिजनेस में ही जान कैसे लेके आनी है, कि वो अपने आप या प्रोडक्ट इतना अच्छा कैसे बनाना है कि यूज़र खुद एक्वायर हो बिना अपना पैसा जलाए.
ट्रू नाइस. तो एक दो बिजनेस के बारे में बताओ, फिर अपन आपके बिजनेस एक्यूमेन पे जाएंगे. मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, क्योंकि नॉन फंडेड प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. पर एक बताओ कि एक बिजनेस जो एक स्टार्टअप या एक स्मॉल बिजनेस कुछ भी जो आपको बहुत ही बढ़िया लगता हो और उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग लगते हैं, कोई रीज़न हो जिसका बहुत अच्छा लगता हो, और एक स्टार्टअप या बिजनेस जो आपको लगता है कि यार ये तो मतलब बस गया या मतलब आपको नहीं पसंद पर्सनली. आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्वियसली यू एंड मी वी आर नॉट बेटर जजेस हियर, हर किसी का अपना गेम है, बस पर्सनली बाहर से ऐसा लगता है यार क्या ही बना रहा है भाई, क्वालिटी नहीं है. तो ऐसे दोनों का एक एग्जाम्पल दो, कुछ कोई ऐसा लग रहा हो
यार
अच्छा कौन सा लगता है और लगता है यार ये तो.
अच्छे में भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं. लेटेस्ट मतलब इज माई ट्रिप, उसकी स्टोरी पता हो आपको.
नॉन फंडेड है वो भी,
नॉन फंडेड है ना. आप फंडेड पूछ रहे हो?
हाँ,
जो बहुत
स्टार्टअप फंडिंग वाले हैं,
फंडिंग वाले जो
इज माई ट्रिप नॉन फंडेड है ना.
नॉन फंडेड है, सीधा आईपीओ,
सीधा आईपीओ
गया, आईपीओ गया. बहुत किलर स्टोरी है उनकी भी. तो प्रॉफिटेबल चलाया अच्छा, और मेक माई ट्रिप के साथ कॉम्पिटिशन में जो पैसा जला रहे थे कस्टमर एक्विजिशन में, उनके साथ कम्पीट करके पैसा बनाते बनाते सीधा सही कंपनी बनाई.
ये उन्होंने तो कमेंडेबल काम किया यार, पता नहीं
अमेजिंग यार.
तो वो तो नॉन फंडेड, फंडेड बताओ कौन सी लगती है जो.
यार मुझे लगता है कि जोमैटो इन द लॉन्ग रन आज वैसे नहीं बना रहा, बट वो इतना इतना कुछ कंट्रोल करता है वो, तो अभी लोगों को पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे दे आर स्टार्ट, जिन्होंने हाइपर प्योर स्टार्ट किया है, मतलब वो बहुत कुछ कर सकते हैं. वो सब जानते हैं कि आप क्या किस टाइम पे क्या खाना पसंद करते हो.
True.
और
कैसा खाना
पसंद. और अगर आप एक चीज़ को सोचो कि एक कॉलेज का, कॉलेज में कोई होता है या हम डे टू डे में अगर हम अपने एक्सपेंस को मैप आउट करें, सबसे ज़्यादा हमारा बाहर खाने पे खर्चा होता है. अगर उसमें वो मोनोपोली उसने बना ली ना, तो वो कुछ ना कुछ कर देगा, फाड़ देगा. True. वो तो आई फील जोमैटो का आईपीओ भी इतना मतलब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, बट जोमैटो कुछ ना कुछ कर देगा.
हाँ, सेम म्यूचुअल फीलिंग. मुझे लगता है कि जोमैटो स्विगी, अभी थोड़े दिन पहले हमारी बात हो रही थी, कोई बोलता कि यार अब हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा. मैं बोला नहीं यार, तुम ये सोचो कि जब तो हमारे पेरेंट्स हमें जब बाहर लेके जाते थे, क्योंकि उनके लिए पार्टी वॉज गोइंग आउट और एक रेस्टोरेंट में आके खाना होना, राइट. जब हम लोग पेरेंट्स बनेंगे, जब हम लोगों की फैमिलीज होगी, जब हम लोगों की कैपेसिटी, आज तो हम बैचलर्स हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी और स्पेंडिंग कैपेसिटी हो गया भाई 500 रुपये बुला लिया, बहुत है, खुश है. जब हम लोग बड़े होंगे, जब हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, तब हमारा ऑर्डर साइज बढ़ेगा जोमैटो का, तब होगा. क्योंकि हम लोग हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल, हमारी फैमिली गैदरिंग्स होगी, हमारे बच्चों के साथ नेटफ्लिक्स देख रहे हैं. Exactly. और खा रहे हैं, राइट. हर संडे हम लोग प्लान बना रहे हैं, हम लोगों को खाने के बाहर आदत है, हम लोगों को न्यू न्यू क्यूजींस खाने की आदत है. हमारे मम्मी पापा वहाँ एक ही रेस्टोरेंट होता था, सालों साल हम लोग सब उसी में गए, बाहर जाते थे. हैव यू बिन देयर? लाइक राइट, हमारे सिटी में एक वो रेस्टोरेंट होता है, बाहर कुछ भी ओकेशन हो, बर्थडे हो, पार्टी हो, उसी रेस्टोरेंट पर लेके जाते हैं. हम लोगों को नए क्यूजींस ट्राई करना है, हर हफ्ते कुछ नया खाना है, नेटफ्लिक्स पे चिल करना है. तो जब हम लोग पेरेंट्स बनेंगे और हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना, तब जोमैटो स्विगी सेंस करेगा.
अरे मेरे को तो ऐसा लगता है कि जोमैटो कल हजारों एकड़ खेत ओन करके सारा फ्रंट एंड पे वैसा ना बनाए,
बैकएंड में बना रहे हो,
खेती करके भी पैसा बना सकते हो तो
कौन से सबसे ज्यादा बिकता है, कौन से रेस्टोरेंट में बिकता है,
कौन से बिकता है, क्या उगाना है, आलू आलू बेच सकता है वो सारे रेस्टोरेंट को, कुछ भी बेच सकता है यार वो, तो मतलब इतने डेटा पे बैठा है आज की डेट में,
वो फ्रंट एंड पे रेस्टोरेंट्स भी खत्म कर सकता है, वो एवरेज वैल्यू भी बढ़ा सकता है, बैक एंड पे
सप्लाई चेन भी कंट्रोल कर सकता है, वो कुछ कर देगा।
जोमैटो स्विगी आई फील दोनों ये गेम है, वो बन सकता है फ्यूचर में, क्योंकि जब हम लोग बड़े होंगे तब।
और जोमैटो क्यों मैंने बोला, स्विगी क्यों नहीं बोला, उसका भी रीजन है। जोमैटो ने राइट टाइम पे कैसे पिवट किया अपना बिजनेस, चलो स्विगी तो आया ही डिलीवरी से स्टार्ट हुआ था, उनका तो कॉन्सेप्ट डे वन पे
नहीं, स्विगी को तो आई थिंक स्टार्टिंग में डिलीवरी बिजनेस बनाना था, जो डिलीवरी है ना आज ई कॉमर्स बिजनेस, स्विगी को वो बनाना था। और वो बनाने के चक्कर में वो लोग शायद ये बना गए।
तो मेरे को जहां तक जोमैटो तो सब फॉलो करेंगे, लिस्टिंग से वो पूरा का पूरा बिजनेस को पिवट करना है एकदम से। तो अब जैसे डाइन आउट भी था उस स्पेस में, तो इतनी स्पीड पे एग्जीक्यूशन और इतने एजाइल होना किसी बिजनेस के लिए, वो भी उस स्केल पे, बात होनी है कि आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो आप जब नहीं चल रहा हो तो पिवट करना आसान होता है। जब एक कंपनी बन चुकी होती है और फंड रेज भी कर चुकी होती है, एक डायरेक्शन में बढ़ रही होती है जब ट्रेन, वो उस ट्रेन को घुमाना
बहुत
डिफिकल्ट है। अगर वो किसने वो कर दिया ना, तो मेरे को लगता है वो कुछ ना कुछ कर देगा।
नाइस, नो फेयर, ठीक है। तो दैट इज वन। अब कौन सी चीज लगती है कि जो बस्ट हो जाएगी, ऐसा लगता है कि मुझे नहीं जम
सारी
बस्ट है, मुझे नहीं जम रही है, एक तो था दो कोई जो ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं जम रही बिजनेस
यार, ये मेरे को लगता है ये ज़ेप्टो ज़ुप्टो उड़ेगी अच्छे से
तो ऐसा
यार, बिकॉज यार तुम 15 मिनट में दे तो रहे हो राइट, ठीक है, उस पर पैसा नहीं बना पाओगे क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, या तो आप इतने बड़े बन जाओ। बट यह ना कि फूड में आप क्या कर सकते हो कि आप पूरा का पूरा सप्लाई चेन कंट्रोल कर सकते हो, पीछे पूरा बैकएंड तक जा सकते हो, तो आप कुछ ना कुछ बिजनेस बना लोगे राइट। बट ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ये वाले बिजनेसेस हैं, इसमें FMCG प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, आप उसके पीछे सब वैल्यू में नहीं जा सकते, उतना पीछे बैक ट्रैक नहीं कर सकते।
थिंक अबाउट ज़ेप्टो, ओके, मे बी ज़ेप्टो, and I'm saying this because Adit is my brother, like I love him, he's the founder of Zepto.
आपने गलत चीज़ बोली, ये काट
देना, नहीं,
ये मेरा ये belief, मतलब मेरे को
थोड़ा business model, I'm open for this, and obviously यार मैं उसके business model को इतने से समझता नहीं हूँ, it's just because he's such a close friend that I want him to win, मतलब regardless of whatever this is, and I'm sure वो इतना smart है, like the conversation,
मतलब कुछ figure out करना पड़ेगा,
कुछ कर लेगा वो,
कुछ figure out करना पड़ेगा, नहीं तो हर order पे पैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मार्जिन्स बहुत लो हैं वहाँ पे।
डू यू थिंक, जितने लोग देख रहे हैं सबका एक क्वेश्चन होता है, डू यू थिंक बूटस्ट्रैप बिजनेस बन सकता है और पैसे कमा सकते हैं लोग आज?
डेफिनेटली,
टेक में भी।
और मैं बेसिकली इनफैक्ट जब से ये अनाउंस किया, मेरे को ना काफ़ी लिंक्डइन पे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम बिजनेस करें, बूटस्ट्रैप कैसे बन सकता है। तो मैं तो बेसिकली आज यहाँ पे ही मतलब अनाउंस कर देता हूँ कि I'll dedicate my weekend और मैं कॉल सुनूंगा सारे entrepreneur जितनी मैं ले सकता हूँ जिसका business model समझ कर, मैं बताऊँगा यार कि ऐसा कर ले या ऐसा कर ले कि थोड़ा कि उसको थोड़ा runway मिल जाए या वो grow कर ले, क्योंकि चल सकता है bootstrap business।
okay.
ऐसा कुछ नहीं कि bootstrap business मैं अगर मैंने चलाया है, और बहुत examples हैं, Zerodha, Zoho, Ease My Trip, तो मतलब चल तो सकता है ना। सिर्फ मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में, जैसे कंस्ट्रेन अपने, अगर तुम्हें पता है यार इस कंस्ट्रेन में मुझे काम करना है, और आपका माइंड और की क्लैरिटी, और आप फिगर आउट कर लोगे कैसे होगा बूटस्ट्रैप। अब फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा बूटस्ट्रैप में इशू क्या है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ग्रॉस मार्जिन तो आप बना लेते हो, आप कपड़ा अपना ई कॉम खोलो या फूड का बिजनेस खोलो राइट, कोई भी टेक में बिजनेस खोलो, ग्रॉस मार्जिन पर आप काम कर लेते हो। प्रॉब्लम आती है कैक में,
नए कस्टमर
उसमें आप पैसा लूज करते हो। अगर आप वो फिगर आउट कर लो ना क्रिएटिव वे कि आपको कस्टमर कैसे एक्वायर करना है और अपना प्रोडक्ट इतना सॉलिड कैसे बनाना है, तो आप बूटस्ट्रैप बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो।
कोई तरीका बताओ जिससे काफी क्रिएटिवली आपने किया हो, जो फील कस्टमर, क्योंकि यार मान लो मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ, ओके, हजारों, चलो सॉफ्टवेयर की बात ही करते हैं, आपकी जो आप करते हो, आप वेबसाइट बना रहे हो, हजारों लोग वेबसाइट, मैं गूगल करूंगा वेबसाइट डेवलपर शहर में, क्या अंधेरी के अंदर ही मेरे को 50 मिल जाएंगे राइट right? तो जब इतना कंपटीशन है, मुझे वेबसाइट बनानी किसी बिजनेस के लिए, तो मैं स्टैंड आउट कैसे करूंगा उधर? और अभी स्टार्टिंग में तो मेरी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, मेरे पास कुछ आई मीन वन वे आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कॉन्टेंट कि तुम कॉन्टेंट बना के अपनी ब्रांड बना दो और वो करो, क्योंकि आई डिड द सेम वे. पर अगर वो नहीं है, स्टार्ट ही कर रहे हैं अब, एकदम ही शुरुआत है, तो कैसे करो? एंड यू डिड इट ऑल्सो लाइक यू वर नेवर अ ब्रांड, यू वर नेवर अ पर्सनल ब्रांड, राइट? आपने भी बिना पर्सनल ब्रांड के बनाया, तो उस टाइम पे कैसे फिगर आउट करो कि मेरे को पैसा मिल जाए?
सी, सबसे प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट स्किल जो हर फाउंडर को सीखना चाहिए वो है हाउ टू सेल.
ओके,
अगर बेचना नहीं आता ना, फिर आप, आपको क्योंकि अपनी जर्नी में ना, स्टार्टअप की जर्नी में डेली कुछ ना कुछ बेचना है. टीम, जो अगर आप रिसोर्स एक्वायर करने जा रहे हो उसको विजन बेचनी है. रिटेन करना है किसी एम्प्लॉय को तो उसको कुछ बेचना है. कस्टमर को कुछ बेचना है, इन्वेस्टर को कुछ बेचना है. तो सबसे आप पहले इंपॉर्टेंट स्किल है कि बेचना सीख लो यार. कोई बुक पढ़ लो, मार्केट में जाओ. मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रोडक्ट पकड़ लो किसी सेल्स, कोई कंपनी में ना, मतलब वो इंसाइक्लोपीडिया में घुस जाओ, बेचने डोर टू डोर कर लो. क्योंकि मैंने फर्स्ट चीज़, मैंने ये भी किया हुआ है, डोर टू डोर सेल्स भी किया हुआ है बिफोर कोड ब्रू. मैंने कुछ ऐसे ही सेल्स एक्टिविटी के लिए किसी को ज्वाइन कर लिया था, कुछ कोई फार्मा कंपनी थी, तो उनका ब्रांडिंग डोर टू डोर बेचने, मतलब कि nice. तो वो मैंने बेचना सीखा था सबसे पहले.
तो कैसे बेचते हैं? कैन यू गाइड अस, व्हाट डू यू थिंक की हाउ टू सेल, सेल करने का प्रिंसिपल क्या?
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सी, बहुत सिंपल है. सबने ना जो सेल्स को ना आर्ट बनाया हुआ है, बट सेल्स इज अ साइंस.
ओके,
विच कैन बी लर्न, और स्किल उसका इजीली एक्वायर हो सकता है.
ओके,
ठीक है. अब फॉर एग्जांपल, किसी भी सब्जेक्ट में चार पांच चैप्टर्स होते हैं या चार पांच मेन मॉड्यूल्स हैं, वैसे सेल्स में चार पांच मेन मेन मॉड्यूल्स हैं. फर्स्ट इज कि आप कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करते हो, ठीक है. रेपो बिल्ड करने के बाद सेकेंड मॉड्यूल इज कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हो, उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, ठीक है. थर्ड है कि आप अपना जो सर्विस या प्रोडक्ट है वो बताते हो कि तेरी प्रॉब्लम वो कैसे रिजॉल्व करेगा. फोर्थ है अपना प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हो, नेगोशिएट करते हो. तो ये चार, अगर सेल्स को इस चार स्किल्स में या चार मॉड्यूल्स में तोड़ दो और हर एक को आप लर्न करने की कोशिश करो, तो यू कैन लर्न स्किल ऑफ सेल्स इजीली.
एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन, बिकॉज नाउ आई बिलीव दैट वन थिंग व्हिच आई कॉल माई सेल्फ इज अ सेलर सेडक्शन. इसको सेल्स सेडक्शन बोलते हैं, राइट? यूजुअली तो देखना, बेस्ट सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो रूम में आपको सेड्यूस कर देते हैं एक तरीके से. लाइक यू गेट सेड्यूस विद एन आइडिया. एंड सेलर सेडक्शन मतलब क्या होता है कि जो अच्छा सेल्समैन होता है वो कभी भी प्रॉब्लम, फीचर ये सब नहीं बेचता. वो एक एंड स्टेट बेचता है, आइडियल स्टेट, कि जो उसकी प्रोडक्ट या सर्विस है वो आपको मिलने के बाद बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा. तो आपको वो पहले इमेजिन करा देता है कि भाई ये होने वाला तेरे साथ. नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी इमेजिन्ड योर सेल्फ कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, राइट? कि थिंक अबाउट म्यूजिक फेस्टिवल, मान लो टुमारोलैंड, सबने सुना टुमारोलैंड. अब उसकी आफ्टर मूवी ना आपको एकदम एक एंड स्टेट भेज दी थी कि भाई इतने तुम मजे कर रहे हो, इतने आसपास लोग हैं, हजारों दोस्त बनेंगे, तुम डांस कर रहे हो, तुम पागल हो रहे हो, मस्ती हो रहे हो, बेस्ट लोग आ रहे हैं. अब तुम्हारे माइंड में तुम ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हो, और अगर मैं इधर होता तो कैसे होता. नाउ वो अब बैक स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फिर प्राइस बताएंगे, फिर बताएंगे कि यूरोप जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको आइलैंड पे जाना पड़ेगा, फिर आइलैंड पे जाके आपको 10-12 किलोमीटर वॉक करना पड़ता है आपको, राइट? ये सब चीज़ आपको वो पहले बताए कि भाई 10 किलोमीटर वॉक करके हजारों लोगों के बीच में पानी की भी बहुत दिक्कत होगी, जहाँ तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा, वहाँ जाके तुम्हें 4 घंटे नाचना है, तुम इरिटेट हो जाओगे, तुम नहीं जाओगे. लाइक वो कभी भी स्टार्ट नहीं करते, दे ऑलवेज सेल एन एंड स्टेट की एंड में तुम्हें ये लगेगा.
वो उसको बेसिकली मैं परसीव करता हूँ मार्केटिंग.
ओके,
कि आपको एंड स्टेट, जब हम बेसिकली कोई एड्स देखते हैं मार्केटिंग, परफ्यूम लड़कियां मिल जाएंगी, ये वो एंड स्टेट
इज अ मार्केटिंग, इट्स अ
मार्केटिंग. उसके बाद मार्केटिंग कर दी कि एंड स्टेट क्या है, फिर उसके बाद सेल प्रोसेस स्टार्ट होता है.
सो दैट, ओके, दैट्स मार्केटिंग,
दैट्स मार्केटिंग. एंड देन यू स्टार्ट द सेल्स प्रोसेस. अब वो दिखा दिया, सपना दिखा दिया, अब उसके माइंड में घुस जाओ, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो. और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे की लेसन है सेल का, कि सेलू मत बनो, सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट है. और उसको ना जेन्युइनली, उसको मतलब उसको सोल्यूशन दो. अगर, और वो जेन्युइननेस अगर आपकी रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो सेल अपने आप निकल जाएगी. आपको लगेगा ना, मैं बंदे का काट रहा हूँ सामने वाले का, और मैं बहुत तगड़ा सेल्स पर्सन हूँ. तो मतलब वो शॉर्ट टर्म ही है. अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपने सर्वाइव करना है सेल्स प्रोफेशन में, इवन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैज टू सेल डे इन डे आउट
एवरी डे
तो यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन. अगर आप काट रहे हो दुनिया का तो आपका कटेगा. तो सही सेल्स पर्सन वही है जो जेन्युइनली अंडरस्टैंड करता है प्रॉब्लम को और जेन्युइन सॉल्यूशन देता है और अपने प्रोडक्ट्स और उसको पता है मेरा प्रोडक्ट या सर्विस इसको सॉल्व कर देगी. यार अगर उसकी नहीं करेगी तो वो सही जगह भेज देता है कि यार ये यहाँ से ले ले, कॉम्पिटिटर से ले ले, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और बंदे को याद रहेगा यार इस बंदे ने ना जेन्युइन मेरे को एडवाइस दी थी और कल को दोबारा उसको ज़रूरत होगी ना वो घूम के उस पे आएगा क्योंकि उसको वो जेन्युइननेस मिली है उससे.
कोई ओके टेल अस एनी स्टोरी कोई याद आ रही है आपको कि जिसमें कोल्ड ब्रू में आपने कोई बहुत बड़ा क्लाइंट लैंड कर दिया और आपको लगा भाई अब तो सही है बहुत. कोई स्पेसिफिक स्टोरी जहाँ पे लाइफ चेंजिंग क्लाइंट्स?
अरे यार हाँ, तो मैंने दुबई में ऑफिस खोला था 2017-18 में. तो पहले तो मतलब एक फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस था तो वो तो बहुत ही मतलब टफ. मतलब पहले हम वहाँ पहुँचे, मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ ऑफिस खोलना, वहाँ बंदे हायर करने हैं. अब हर चीज़ फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर गया था और वो भी विजन लेके यार कि यहाँ अब ग्लोबल जाना है, ऑफिस खोलना है दुबई में. तो पहले तो हर चीज़ ना वो कन्वर्जन रेट चल रहा होता माइंड में. तो
खाना खाना 20 रुपये 22 रुपये
पहले तो वही मतलब डाइजेस्ट, हर चीज़ इतनी महंगी आ रही, चल क्या रहा है. तो टैक्सी लेनी तो यार वो होता था कि यार यहाँ से वहाँ तक जाओ 1000 रुपये लग गए. तो पहले 2 साल जब दुबई जाता था मैं वो करने, तो मतलब डेजर्ट में कई बार ऐसे तो पैसे बचाने के लिए बहुत किलोमीटर चलता था. तो वो स्ट्रगल थी पहले जब, बट मतलब हमने ऑनबोर्ड किया था 2-2.5 साल बाद दुबई गवर्नमेंट को एज अ क्लाइंट.
नाइस.
यूएई गवर्नमेंट को.
कैसे लैंड हुआ वो क्लाइंट?
तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज अप्लाई कर रही थी और बड़ी बड़ी कंपनीज, और उसमें बेसिकली इंफोसिस भी थी.
ओके.
कंपटीशन में आरएफपी में तो आरएफपी रिक्वेस्ट
उसमें
काफी, हाँ मतलब उसमें काफी कॉम्पिटिटर्स थे, इंफोसिस, बहुत सब बड़ी बड़ी कंपनीज भी थी. तो हमने हर स्टेज ऑफ आरएफपी को बहुत क्लोजली मतलब 200% उसमें अपनी जान लगा दी. और फिर जब पिच हुआ ना, मतलब जो जो सीईओ थे उस डिवीजन के, तो तुमने कहा कि यू आर फेयरली न्यू कंपनी के हम कैसे ट्रस्ट कर लें. तो मैंने कहा यार कि मेरे से आप ना जितनी अमाउंट आप दोगे मुझे उसका चेक बना के रख लो, अगर टाइम पे और उस वैल्यू का डिलीवर नहीं हुआ तो 100% पैसे वापस. और दुबई में चेक लगाना मतलब ये अगर उन्होंने लगा लिया और बाउंस हो गया तो मेरे को तो कहीं से भी उठा लेंगे वो. तो मैंने उस लेवल का रिस्क ले लिया कि यार के देखी जाएगी कि जितना पैसा दिया है पूरा का पूरा आप उठा लो अगर नहीं हुआ. हमने तो इतना इतनी बड़ी गारंटी मतलब कोई नहीं देता B2B बिजनेस में. तो उससे वो क्रैक हो गया मतलब दुबई गवर्नमेंट, एंड इट वॉज द बिगेस्ट मोमेंट यार कि इतनी इतना मतलब एक गवर्नमेंट वो भी इंटरनेशनल सॉइल पे जाके वहाँ की गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उठाना, इट्स अ बिग डील.
नाइस. ये स्टोरी सही है यार, ऐसे मतलब डर लग जाए आदमी को यूजुअली.
हाँ.
और ऐसी अथॉरिटी के सामने बैठे तो पहले ही डर लगता है,
पहले ही डर लगता है
ऊपर से यू आर कमिटिंग दैट. सो व्हाट डू यू थिंक ऐसे क्रिएटिव वेज कौन कौन से, जैसे गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स उनके इसमें देखो तो वहाँ से उठा सकते हो, और कौन से क्रिएटिव वेज हैं जहाँ से आप बिजनेस क्लाइंट बढ़ा सकते हो जो आपको लगता है ये अंडररेटेड वेज है, लोग देखते नहीं है, यहाँ से बिजनेसेस बन सकते हैं
यार,
क्लाइंट आ सकते हैं? मतलब
एफिलिएट जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, मैंने वो बहुत किया जो जीरो था का हम एफिलिएट चैनल डिस्कस कर रहे थे. ऐसे बहुत मतलब ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके बिहाफ पे पर्सन मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने बिजनेस में, वो उस इंडस्ट्री में काफ़ी साल से हैं, अगर आप उनको पकड़ के उनके कुछ क्लाइंट अपने थ्रू ले लो और उनको इन अ वे B2B में इन्फ्लुएंसर मॉडल क्रिएट कर लो तो उसमें बहुत बड़ा धंधा बन सकता है.
हाँ, कि कमीशन बेस्ड लोगों लोग ढूंढ लो जो इन्फ्लुएंसर
सैटेलाइट मॉडल है, क्योंकि उसमें आपको पेरोल पे नहीं रखने पड़ रहे बंदे, एंड आप मतलब ग्लोबल वो नेटवर्क बना सकते हो.
जैसे एक यू नो डॉक्टर की सर्विस मैनेजमेंट के लिए कोई ऐप थी, तो उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड कि वो जो डॉक्टर्स की जो सारी मेडिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंसेज होती है ना, जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उन लोगों को कमीशन दी.
कमीशन
कि आपकी कॉन्फ्रेंस में हजारों डॉक्टर हर साल आते हैं, उसमें आप इंडिया में 10-12 कॉन्फ्रेंस करते हो, हर महीने आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, हजारों डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, तो उसमें आप जो भी आपकी यूजर से कन्वर्ट होता है हम आपको कमीशन देंगे लाइफ लॉन्ग एक पर्टिकुलर परसेंट। और ऐसे करके उन्होंने बिजनेस एक्वायर किया और सारे मोस्टली उनके बहुत सारे डॉक्टर्स आकर वो प्ले पे यूज करने लग गए।
तो अब ये एक ग्रोथ हैक तरीका है, टेक्निक है, यू नो, टू एक्वायर बिजनेसेस। या तो यही यूजर एक्विजिशन कॉस्ट अपने क्रिएटिव वे से ब्रिंग डाउन करनी है। आई थिंक दैट इज अ वे टू बिल्ड बूटस्ट्रैप बिजनेस।
नाइस कि जो दैट्स एंड यू नो आई फील दिस इज अंडररेटेड एक्चुअली। लोग ऐसे दिमाग लगाते कि जहाँ पे तुम्हारा टारगेट ऑडियंस सब लोग साथ में हो रहे हो ना, तो जो इंसान उसको साथ में लेके आ रहा है उस इंसान को अपना कर लो।
यार एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है, जुगाड़ लगा रहे हैं हम। और इंडिया से बड़ा जुगाड़ नेशन कौन सा है यार। हाँ। यहाँ पे सारे जुगाड़ लगाने पे आ जाएं तो बहुत किलर बूटस्ट्रैप धंधे बन सकते हैं। और जो हम डिस्कस कर रहे थे यार शार्क टैंक में, कितने अमेजिंग अमेजिंग धंधे, मतलब करोड़ों का प्रॉफिट बना रहे हैं ऑल बूटस्ट्रैप, वो भी एग्जांपल्स ही हैं यार।
और पहली बार आए
फंड लेने।
अब तो खैर शार्क टैंक में लोग फंड लेने ज्यादा
मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं, बट स्टिल यार बिजनेसेस तो अच्छे हैं। मतलब आई लाइक द बिजनेसेस व्हिच आर कमिंग।
कोई ऐसा कभी कोई जुगाड़ लगाया कभी आपने, बोला कि यार
किस टाइप का जुगाड़
तगड़ा जिससे बिजनेस आपका बढ़िया हो?
हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे जुगाड़ हैं यार, बहुत। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत मतलब वो इन मतलब सीक्रेट वो है, बट अब जैसे आपने कहा कि गूगल पे बहुत लोग होंगे, है ना, कि सब कम्पीट कर रहे हैं, तो हमने मेन जहाँ पे हमारे बिजनेसेस सबसे ज़्यादा आते हैं, हमने गूगल की रैंकिंग क्रैक कर दी नंबर वन स्पॉट पे, और 2-3 स्पॉट हमने ही एक्वायर कर लिए। और मतलब आप ये लगाओगे इंडस्ट्री के लीडर्स सारे उन रैंकिंग्स के लिए फाइट कर रहे हैं सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, और सारे ही एक्सपर्ट्स बैठे हैं। अगर उसमें हमने क्रैक कर दिया ना टॉप स्पॉट, तो मतलब फिर फाड़ दिया। और ये नहीं कि एक स्पॉट टॉप 3 उठा लिए। तो ऐसे ऐसे मतलब जुगाड़ लगाने पड़ते हैं जहां से आप कैसे धंधा निकालो और जिसकी एक्विजिशन कॉस्ट ना बढ़े आपको।
हर घर में हर बिजनेस में एक छोटे छोटे जुगाड़
हैं। इंडिया के गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में बिजनेस बैठे हैं, उन्होंने बहुत क्रिएटिव जुगाड़ लगाए हैं। तो आई थिंक अगर किसी को कुछ सीखना है बिजनेस के बारे में, तो जो आप अपने शहर में छोटे से छोटे शहर में जो बिजनेसेस हैं उनको स्टडी करो ना, तो आपको समझ आ जाएगा यार कि अगर ये बने हैं और इन्होंने इतना जुगाड़ लगाया तो कहीं से भी कहाँ कुछ भी बैठ के आप बिजनेस बना सकते हो।
ट्रू। रियल ग्रोथ हैक्स तो उन्होंने ही लगाए, क्योंकि उस टाइम में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। इनफैक्ट आई नो कितने ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, वो इस बात का प्राउड फील करते हैं, अरे हमने बिना मार्केटिंग के बनाया है। राइट, मे बी दैट्स ट्रू और रॉन्ग, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, पर उन लोगों को एक प्राउड है कि भाई मैंने 50 करोड़ का धंधा बनाया है, कोई मार्केटिंग नहीं करते हम, आज भी हमारा प्रोडक्ट बिकता है। तो प्रोडक्ट बिकने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लगाया है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बिकता है। तो वो स्टडी कर लो तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी।
और सबसे आई मीन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को लोग सेलिब्रेट करते हैं, इलॉन मस्क एंड, पर मेरे को तो यार अडानी से ऊपर कोई नहीं लगता ऑनेस्टली। और जनरली उस बंदे ने फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मतलब टॉप 5 में पहुंच गया वो बंदा। अब जो मर्जी रिपोर्ट्स आती रहे, ठीक है, जो मर्जी होता रहे, ठीक है, चाहे उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है या नहीं है, पर अगर उसने पॉलिटिकल कनेक्शन से भी ग्रो किया है तो कोई बना लो यार, मतलब वही पॉलिटिशियंस हैं, तुम भी चले जाओ। तो वो क्रिटिसाइज करना तो उसको बनता ही नहीं है, मतलब वो अंबानी से भी ऊपर है। मतलब अंबानीज ने 2 जनरेशन लेके बिजनेस खड़े किए हैं, उसमें से आधा एक अंबानी ने उड़ा दिया। तो उस वो आया बंदा, मतलब उसने एक्सपोर्ट का धंधा शुरू किया, अकेला आया और उसने टॉप 5 में क्रैक कर दिया कन्वेंशनल बिजनेसेस में। कोई टेक एंगल नहीं, कुछ नहीं, कोई फंड रेज नहीं, नथिंग, सीधा आईपीओ पे एक बिजनेस, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस। तो मतलब मैं तो मतलब उस बंदे की तो अलग ही रिस्पेक्ट है मेरे माइंड में, कि बिजनेस बनाया तो उसने बनाया,
मचाया तो है, दैट इज ट्रू।
कल को उठते हो और आपका मन है कि रोड बनाने के धंधे में जाना है, तो लो बनाओ यार पॉलिटिकल कनेक्शंस, व्हाई नॉट। तो उसमें भी ये नहीं है कि यार के पॉलिटिशियंस के आसपास हजारों बिजनेसमैन आते हैं कनेक्शंस बनाने। वो जिस दिन एमएलए बनता है ना कोई, तो उसके घर के में ना सारे कोई ना कोई गिफ्ट छोड़ जाते हैं। तो वो हर कोई नहीं क्रैक कर पाता पॉलिटिकल कनेक्शन भी, वो भी एक धंधा बनाने की जितना ही टफ है
स्किल है वो भी।
हाँ, मतलब एक पॉलिटिशियन भी किसी बिजनेसमैन पे क्यों ट्रस्ट करेगा? तो वो भी क्रैक करना एक धंधा बनाने से कम नहीं है। तो अगर वो भी कौन सा अपने बाप दादा से उसके पॉलिटिशियंस थे, उसने भी स्क्रैच से बिल्ड किया अपना नेटवर्क. नेटवर्किंग है यार, आई काउंट इट एज नेटवर्किंग ओनली.
ट्रू, इट्स आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, आर्ट ऑफ कंटिन्यूइंग.
एंड सी, अब बेट लगाना ऐसे बंदे पे, ठीक है, और उस बेट को होल्ड करना. उसकी बेट हो सकता है वो बड़ी ना होती, मतलब कोई सीएम पे आपने बेट लगाओ कैंडिडेट की, यार ये इसको मैंने वो कर लिया, यार ये पॉलिटिशियन है, या आज एमएलए बना है, कल को सीएम बन सकता है, कल उसके बाद पीएम बन सकता है. आप वो भी तो फ्यूचर की बेट ही खेल रहे हो, आप में वो विजन है वो बेट लगाने की, और उस बेट को होल्ड कर रहे हो एक ही पार्टी के साथ अलाइन होके. ये नहीं कि सरकारें बदल रही है और आप मूव हो रहे हो. तो वो विजन रखना और वो बेट लगाना, और उसका अगर आरओआई किसी को लॉन्ग टर्म में मिल रहा है, ही डिजर्व दैट आरओआई यार.
ट्रू ट्रू, दैट बिलीव दैट स्पॉटिंग द अपॉर्चुनिटी, स्पॉटिंग द राइट पर्सन, कन्विक्शन, सब चीजें मिला के सबका.
अब फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिशियन हूँ, राइट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं पॉलिटिशियन हूँ, मुझे बताया यार कि मुझे ना इसको प्राइवेटाइज करना है. और एज अ पॉलिटिशियन मेरा विजन क्लियर है कि मैं तो देश को आगे लेके जा रहा हूँ. हाँ. इसको प्राइवेटाइज करूंगा. अब मैं अगर 10 बिजनेसमैन को जानता हूँ और मुझे पता है यार ये बंदा मेरा दोस्त भी है, या मेरा ये, मैं इसको जानता हूँ और ये बंदा सही धंधा कर देगा, ये देश को भी आगे ले जाएगा, 4 पैसे खुद के भी बना लेगा, कोई चक्कर नहीं, और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू दे देगा, तो मैं क्यों ना करूँ यार एज अ पॉलिटिशियन.
ट्रू ट्रू, वाई नॉट,
वाई नॉट. देश आगे जा रहा है, सिस्टम्स बेटर हो रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है, और अगर वो कंपनी आगे जा रही है, उसके रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा मिल रहा है, सो विन विन फॉर एवरीबॉडी यार.
और टैक्स से ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है, तो
सब बढ़ रहा है. हाँ, तो मतलब उसको नेगेटिव लाइट में देखने का पॉइंट ही नहीं है.
ट्रू ट्रू.
और ये एक दो रिपोर्ट्स के चक्कर में मार ली ऐसी मार्केट उसकी, बट और वो लोग ये नहीं देख रहे, वो तो शॉर्ट सेलर है यार.
हाँ, दैट वो तो चाहता है गिरना,
चाहता है गिरना.
Okay, the last question is, I want to know from you, I had a great chat, is, tell me one business principle which you feel ki jitne log dekh rahe hain, jinko abhi business banana hai, sare young entrepreneurs hain, unko mind mein rakhna chahiye in order to build a great business. Koi specific business formula, funda, ya koi principle which you believe in?
I think it's not a business principle, but it's a life principle. इट्स अ लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन.
ओके,
ठीक है,
गो डीपर.
तो बेसिकली होता गया है कि एवरी बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट, नॉट ओनली अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, मतलब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद ना, अगर राइट टाइम पे राइट चीज नहीं की तो आप फेल हो जाते हो. चाहे जितने मर्जी स्मार्ट हो, जितना मर्जी पैसा उठा लिया, कई बार होता है अहेड ऑफ टाइम, कई बार लेट, इसी के बीच में ऑस्कुलेट करते रहते हैं, राइट. तो अब बिजनेसेस, अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन के राइट टाइम क्या है. तो अगर दो प्रिंसिपल पे हम टिक रहे हैं, परसिवेरेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, सो बेसिकली यू आर ट्राइंग समथिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग सम बिजनेस आइडिया, राइट, सक्सेस और फेल, यू कीप ऑन डूइंग इट. अगर आप ये करते रहोगे तो ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि वो आप राइट टाइम पे राइट आइडिया को एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे. And it would click.
Interesting. And that's, the whole life is about experimentation then.
So,
वहीं से game बनता है.
वहीं से game बनता है. तो I think for business is, it's also true.
True. That is true. In fact, I believe in this factor ki, you know, right hard work, right business model, right experimentation, सबसे सबके साथ साथ राइट टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
बट एंड यू कैन
यू कैन नॉट कंट्रोल दैट,
कंट्रोल दैट,
यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग एल्स, सो ऑल यू हैव टू डू इज कीप डूइंग इट अगेन
अगेन अगेन,
कभी तो बैठ जाएगा,
कभी तो बैठ जाएगा.
नाइस. और एक बार बिठा दिया गया ना, तो अगली बार ज्यादा बेटर बैठेगा. हाँ, फिर बेटर बैठ,
फिर वो आपको थोड़ा वो समझ आने लग जाएगा,
सेंस होने लगेगा,
सेंस होने लगेगा टाइमिंग का, वो एक्सपेरिमेंट्स का. तो जो साइंटिस्ट भी इन्वेंशन करते थे, पहला इन्वेंशन करने में उनको 100 एक्सपेरिमेंट्स लग जाते थे. उसके बाद वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कम होते जाते हैं.
इट्स क्रिकेट जैसा हो गया ना, मतलब आप बैटिंग करने जाते हो तो स्टार्टिंग में एक ओवर में एक बॉल भी नहीं खेल पाते उधर उधर, फिर धीरे धीरे टच होने लगती है, फिर बाउंड्री जाती है धीरे धीरे, एंड फिर एक टाइम आता है जब इतनी प्रैक्टिस करते हो 6 बॉल पे 6 छक्के मारते हो.
एग्जैक्टली,
दैट इज योर टाइमिंग. एंड उसके बाद भी इतनी प्रैक्टिस, इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन राइट होने के बाद भी एक बार एक गलत बात आ जाती है और आउट हो
जाते हैं,
सो यू हैव टू स्टार्ट अगेन,
स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन।
मतलब विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज जैसे लोग
सबके साथ हुए,
सबके साथ, सब आज भी जीरो पे आउट होते हैं,
राइट, एब्सोल्युटली।
सो दैट्स द होल बिजनेस गेम। थैंक यू सो मच ब्रदर, इट वाज लवली चैटिंग टू यू,
प्लेजर।
आई होप you enjoyed as well and we will be able to get your story out in a better way. Plus main wait kar raha hu ki third unicorn kab aane wala hai,
bahut jaldi,
all the best,
thank you so
third
much.
unicorn naam ashni ne decide kar liya tha, third unicorn,
yeah
kya teesra banane ja raha hu to pehla growfers,
second is bharat pe,
third unicorn
I hope decacorn bane ye,
nice। ऑब्वियसली अब अगर साथ में दो लोग सोर्सेज जुड़े हैं, फोर्सेस, तो एक और एक 11 ही होता है,
एक और एक 11 ही होता है।
सो आई होप दैट इट वर्क्स आउट वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, ऑल द बेस्ट,
थैंक्स फॉर,
एंड प्लीज रिवील, हमारे पास ही करना, हमारे साथ ही करना। डन
डन।